राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ है, सोते रो आधे। जय राधा माधव कुंज बिहारी,
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 जय राधा माधव कुंज बिहारी।
गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी,
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 जय राधा माधव कुंज बिहारी,
जय राधा माधव कुंज बिहारी।
यशोदानंदन ब्रज जन रंजन,
यशोदानंदन ब्रज जन रंजन,
यशोदानंदन ब्रज जन रंजन,
यशोदानंदन ब्रज जन रंजन,
यमुना तीरवन छारी,
यमुना तीरवन छारी,
यमुना तीरवन
या मुना तेरा।
राधा माधव कुंज बिहारे,
जय राधा माधव कुंज बिहारे।
Hare Krishna, Hare Krishna. कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare,
Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama.
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare,
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare,
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare,
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare,
Bolo Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare,
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Ram Ram Ram
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare,
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Ram Ram Ram
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare,
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Ram
Radhagiri Hari Radhagiri Hari Radhagiri Hari
Radhagiri Hari Radhagiri Hari Radhagiri Hari
Jagannath Jagannath Balabhadra Jay Sobhadra
Jai Jagannath Jagannath Balabhadra Jay Sobhadra
Jay Jagannath Jagannath Balabhadra Jay Sobhadra
Jay Jagannath Jagannath
राधा गिरधारी भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। सुभद्रा जी की, शशि गौर निताय की, शील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 18 गुरु न सस्यात् स्वजनं न सस्यात्,
गुरु न सस्यात् स्वजनं न सस्यात्,
पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्,
पिता न सस्यात् जननी सस्यात्,
देवं न तस्यात् पतिं च तस्यात्,
देवं न तस्यान् पतिं सस्यात्,
नमोचयेद्य समुपेत मृत्युं,
नमोचयेद समुपेत मृत्युं,
गुरुर्न सस्यात् स्वजनं न सस्यात्,
गुरुर्न सस्यात् स्वजनं न सस्यात्,
पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्,
पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्,
देवं न तस्यात् पतिश्च सस्यात्,
देवं न तस्यान् पतिश्व सस्यात्,
नमोचयेद्य समुपेत मृत्युं,
नमोचयेद समुपेत मृत्युं, गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्,
पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्,
देवं न तस्यान् पतिस्व सस्यात्,
देवं न तस्यान् पतिस्व सस्यात्,
नमो चेध समुपेत मृत्यु,
नमो चेध समुपेत मृत्यु,
कृष्ण त्वदीय पद कज पंजरांते अध्येव मे विशतु मा नसराज हंस, प्राण प्रयाण समये कफवात पीते कंटावरोधन विदो स्मरणं कुतस्ते, योन्तः प्रविश्य मम वा चमिमां प्रसूक्ता सञ्जीवयत्यखिलश तिधरस्वधाम्ना,
अन्यांश हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तोभ्यम्। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पात्र पुटेशयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जिहवे पिबत्वा मृतमेत देव गोविन्द राम नरमाधवे।
हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ की ओर से प्रस्थापित श्रीमद् भागवत सप्ताह के इस सप्तम और अंतिम दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। हृदय में प्रसन्नता भी हो रही है कि आज सातवां दिन है। एक ओर से दुख भी हो रहा है कि आज अंतिम दिन है। वैसे तो भगवत कथा का अंत नहीं होता है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान अनंत है। भगवान का एक नाम ही है अनंत, जिसका कभी अंत न हो उसे अनंत कहते हैं। भगवान की कथा अनंत है और उस कथा को पूर्ण करना ये अनंत के हाथों में भी नहीं है। अनंत शेष अपने अनंत मुख से अनंत काल से भगवान की कथा गा रहे हैं लेकिन आज तक शेष नहीं कर पाए। शेष दिनेश गणेश महेश सुर सेहु जाहि निरंतर ध्यावे नारद शेषुक व्यास रहे पचिहारी पुनीतव पार न पावे। एक से एक लोग भगवान के गुणगान करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं लेकिन आज तक पार नहीं पा पाए। और हम लोग सोचेंगे सात दिन में पूरी कथा सुन लेंगे तो ये कभी हो नहीं सकता है। आपने देखा ना यहां पर सात दिन में केवल चार श्लोक की कथा हुई। ऐसे भागवत में 18,000 श्लोक है। संक्षिप्त में भी यदि भागवत कथा करनी हो इस प्रकार से जैसे यहां पर हुई तो लगभग 70 साल बीत सकते हैं। 70 साल तक ऐसे हम कंटिन्यू रोज आए तब भी यह कथा इस प्रकार से पूर्ण नहीं होगी। बहुत बड़ा खजाना है। लेकिन समंदर में से कहीं से भी आप जल ले लो, अमृत के समुंदर से कहीं से भी आप ग्लास भर के पी लो, वह अमृत ही होता है। ऐसे भागवत के अनेक प्रसंगों में से किसी भी प्रसंग को आप श्रवण करो सुनो उनमें उतना ही आनंद आता है। यहां पर भगवान ऋषभ देव के द्वारा उपदेश पिछले 6 दिनों से हम श्रवण कर रहे हैं। 6 दिनों में आपने बहुत कुछ श्रवण किया और बहुत कुछ जाना भी होगा। और भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों को उपदेश दे रहे हैं तो हमने देखा कभी कभी एक बात 3-3 बार कह रहे हैं, एक ही प्रकार के श्लोक 2-2, 3-3 बार। एक बार कह दिए इंद्र तृप्ति नहीं करनी चाहिए, दूसरी बार, तीसरी बार। यद्यपि विचार किया जाए तो किसी भी अध्याय में, किसी भी प्रसंग में, किसी भी श्लोक में एक ही चीज बारंबार यदि रिपीट होती है तो उस प्रसंग का, उस अध्याय का, उस श्लोक का दोष माना जाता है। व्याकरण शास्त्र में पुनरुक्ति जो है इसे दोष कहते हैं। पुनर्माने दोबारा, दूसरी बार उक्ति वो बोलना। तो भगवान ऋषभदेव एक ही चीज एक बार, दो बार, तीन बार बोल रहे हैं तो क्या भगवान के द्वारा दोष हो रहा है? नहीं। यहां पर इस कथा का टाइटल है द टीचिंग ऑफ लॉर्ड ऋषभदेव। टीचिंग का अर्थ होता है उपदेश। जब कोई व्यक्ति उपदेश देने बैठता है, देखिए उपदेश का अर्थ होता है श्रेयस। उपदेश उसे कहते हैं जिसको कोई व्यक्ति उपदेश सुना रहा हो उसका हृदय परिवर्तन हो जाए। और दूसरी प्रकार का प्रवचन होता है प्रेयस, बस दूसरों के कान को प्रिय लगे, दूसरों को अच्छा लगाने के लिए। परंतु यहां भगवान ऋषभदेव कोई प्रेयस प्रवचन नहीं कर रहे हैं, अपने पुत्रों को खुश करने के लिए, मौज लाने के लिए प्रवचन नहीं हो रहा है। यहां तो भगवान ऋषभदेव उपदेश दे रहे हैं। इस उपदेश के द्वारा भगवान ऋषभदेव अपने पुत्र के हृदय को परिवर्तन करना चाहते हैं। इसलिए जहां जहां भगवान ऋषभदेव ने देखा कि मेरे पुत्र को यह शिक्षा की ज्यादा आवश्यकता है, वहां वहां उन्होंने उस शिक्षा को 2-2, 3-3 बार दोहराया। और उपदेश के समय एक ही चीज को यदि हम बारंबार दोहराते हैं तो उसको दोष नहीं, उसको अलंकृत कहा जाता है, अलंकार। तो भगवान ऋषभदेव बहुत सुंदर शिक्षा दे रहे हैं जिससे हमारा हृदय परिवर्तन हो सकता है। और इस 18वें श्लोक में कहते हैं कि हे मेरे पुत्रों, आज मैं तुम्हें यह उपदेश दे रहा हूं, क्यों? क्योंकि मेरा कर्तव्य है। बहुत सुंदर श्लोक भगवान ऋषभदेव कहते हैं, इस संसार में जितने भी लीडर हैं, उस लीडरों का कर्तव्य होता है कि अपने जो आश्रित हैं उन आश्रितों को यह उपदेश प्रदान करें। हमारे जितने भी आश्रित हैं उन सबको यह उपदेश देना चाहिए। और भगवान ऋषभदेव इस 18वें श्लोक में यहां तक कहते हैं, जो गुरु अपने शिष्य को ऐसा उपदेश नहीं देते हैं वह गुरु गुरु नहीं है, गुरु न स स्यात्। स माने वह और न स्यात् माने नहीं है। वह गुरु गुरु नहीं है जो अपने शिष्य को ऐसा उपदेश देकर भक्त न बना सके। न मोचयेत समुपेत मृत्युम। एक गुरु का कर्तव्य होता है कि अपने शिष्य को इस प्रकार से उपदेश दे और इस उपदेश के द्वारा अपने उस शिष्य का के जीवन का परिवर्तन करे। देखिए इस संसार में गुरु उपदेश देने के लिए ही होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हम गुरुजी के पास जाएंगे, कुछ मंत्र मार देंगे, कुछ फल दे देंगे, हमारे पीठ पर हाथ घुमा देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। गुरु जो होता है वाणी से ही सपोर्ट करता है। गुरु अपने शिष्य का उपदेश के द्वारा ही परिवर्तन कर सकता है, उसे सुखी कर सकता है। इसलिए गुरु से अन्य कोई आशा न रखते हुए उपदेश सुनने की आशा रखनी चाहिए। गुरु के मुख से उपदेश। गुरु मुख पद्म वाक्य चीते ते करिय एक्य। हमारे चित में बहुत चिंता है, बहुत दुख है, ग्लानी है, और सब लोग इस चिंता के द्वारा जल रहे हैं। हम देख रहे हैं सब लोग चिंता से ही दुखी हैं, चिंता ही सबको जला रही है, चिंता के कारण ही सब रोग उत्पन्न होते हैं, हार्ट अटैक आना। परंतु कहते हैं उस चिंता से यदि मुक्त होना है, चिंता कैसी है, कहते हैं चिंता चिता अपि गरियसी। दो शब्द है चिता और चिंता। चिता जो होती है वे मरे हुए शव को जलाती है, परंतु चिंता जीवित व्यक्ति को रात दिन जलाती रहती है। संसार दावा नले दिया निशि हिया जले। रात दिन यह जीव यह व्यक्ति संसार में जलते रहता है चिंता के कारण। संसार दावा नल लीढ़ लोक। ये जो संसार है, हम ये जो संसार में रह रहे हैं, यह संसार दावा अग्नि की तरह जल रहा है। जैसे जंगल में दावा अग्नि लगती है, उस दावा अग्नि की पहली विशेषता यह है कि जंगल में आग लगाने के लिए कोई बाहर से नहीं जाता है, वे अपने आप लग जाती है। दूसरी विशेषता, उस जंगल की दावा अग्नि को कोई बुझा नहीं सकता है। तीसरी विशेषता, उस जंगल की दावा अग्नि से कोई भागना चाहे तो भाग नहीं सकता है, क्योंकि वह दावा अग्नि चारों ओर से होती है। ठीक उसी प्रकार यह संसार भी जंगल की दावा अग्नि की तरह जल रहा है। जंगल में तो मात्र अग्नि है, आग है, परंतु इस संसार में काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य ईर्ष्या द्वेष ग्लानि चिंता अनेक प्रकार की आग की लपट में सब लोग जल रहे हैं। और इस संसार की आग की विशेषता क्या है? संसार में जो आग लगी है इसे कोई लगाने नहीं आया है। जैसे जंगल में कोई आग लगाने नहीं जाता, एक वृक्ष दूसरे वृक्ष के साथ टकराते हैं तो आग अपने आप लग जाती है। वैसे हमारे जीवन में जो आग है, जो दुख है, जो चिंता है, ये दुख चिंता देने वाला और कोई नहीं है। प्रायः हम लोग सोचते हैं कि फलाने भाई हमको दुख दे रहे हैं, फलानी बहन हमको दुख दे रही है, हमारी सास हमको दुखी कर रही है। शास्त्र का एक सिद्धांत है, इस संसार में कोई भी किसी को दुखी नहीं कर सकता है और कोई भी किसी को सुखी नहीं कर सकता है। हमारे जीवन में जो दुख है वह दुख हमारे अपने कर्मों का फल है। पूर्व जन्म में हमने कुछ बुरे कर्म किए होंगे, वह बुरे कर्म ही इस जन्म में दुख बनकर आते हैं। बस दुख हमारे कर्म में है, जिसके द्वारा मिल रहा है वह तो मात्र माध्यम है, और जिसके माध्यम से दुख आता है ना, उनको कभी दोष नहीं देना चाहिए। हम तो उसको ही गाली देते हैं कि यही है, यही मुझे दुख दे रहा है। उसे तो थैंक यू कहना चाहिए, उसके चरण पकड़ने चाहिए, उसे धन्यवाद देना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेचारे जिसके माध्यम से दुख आ रहे हैं वे हमारे कर्म के फल को उठाकर ढोकर हमारे पास डिलीवरी करते हैं, पहुंचाते हैं। उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं, जैसे किसी स्त्री ने अपने पति को कहा, जाओ 1 किलो आलू 2 किलो लौकी दूधी और 3 किलो टमाटर लेकर आओ। अब तो आज के पति का सब जगह पर चलता है, ऑफिस में रोप करता है, ऑफिस में है? एक ही आवाज से सब लोग चुप हो जाते हैं, लेकिन पत्नी के सामने कुछ नहीं चलता है। पहले के राजा महाराजा पूरी दुनिया पर विजयी, पूरी दुनिया पर विजयी होकर आते थे, लेकिन जैसे ही घर पे आते थे अपना मुकुट पत्नी के चरणों में रख देते थे। मान लो किसी पत्नी ने कहा जाओ 1 किलो आलू 2 किलो लौकी और 3 किलो टमाटर लेकर आओ, और ये जाते हैं और सोचते हैं रास्ते से खरीदूंगा तो कोई देख लेगा, और किसी को लगेगा कि ये तो पत्नी के वश में हो गया है, कोई दिखाना नहीं चाहता है। तब अब तो धीरूभाई अंबानी वालों ने तो रिलायंस फ्रेश है, अब तो ऐसी शोरूम में सब सब्जी मिलने लगी है, तब रिलायंस फ्रेश में चला जाता है, वहां कौन देखने वाला है दुकान में। रिलायंस फ्रेश में चला गया और उन्होंने ढूंढा, क्योंकि पत्नी ने कहा था अच्छा आलू लेके आना, तो अपने हिसाब से आलू 1 किलो ढूंढा, वजन करवाया, थैली में भर लिया। 2 किलो लौकी दूधी वजन करवाया, उसे थैली में रख दिया, और 3 किलो टमाटर उन्होंने चुना, चॉइस किया, वजन कराया, थैली में रख दिया। लेकिन अब 3 थैली हाथ में है और सोचा कि रास्ते में लेकर जाऊंगा, कोई देख लेगा तो है? तो क्या सोचेंगे कि ये पत्नी के वश में हो गया है। तब रिलायंस वाले जो है, रिलायंस फ्रेश वाले एक फैसिलिटी देते हैं, होम डिलीवरी फ्री है ना। तो वो कह देते हैं एक काम करो, ये 3 थैली है ना मेरे घर पे आप पहुंचा देना, ये मेरा एड्रेस है। तो ये व्यक्ति अपने घर पे चला गया। आधे घंटे के बाद वो डिलीवरी बॉय जो डिलीवरी करने आता है, वो 3 थैली को लेकर आया। इन्होंने 3 थैली खाली की और उसने जो आलू लौकी टमाटर जो चुना था वही उनके पास आया। लेकिन देखा तो 2 लौकी जो थी सड़ी हुई थी, 3-4 टमाटर सड़े हुए थे। और वो व्यक्ति दरवाजे के पास आया और जोर से एक थप्पड़ उस डिलीवरी बॉय को मारा। बोले ऐसा लौकी और ऐसा टमाटर लेकर क्यों आया? अब बताइए उस डिलीवरी बॉय का क्या फॉल्ट है, उसका क्या दोष है? उसने तो जो थैली दी थी वो तो दुकान से उसके घर पे छोड़ने के लिए आया, उसको तो धन्यवाद कहना चाहिए ना, थैंक यू कहना चाहिए कि भाई आपने दुकान से मेरे घर पर पहुंचाया, थैंक यू। लेकिन ये उसको ही मारने लगा, तो ये गलत है कि नहीं? उसी प्रकार हमारे जीवन में पूर्व जन्म में कुछ बुरे कर्म किए हैं, वह बुरे कर्म हमारे पास आते हैं लेकिन किसी के माध्यम से आते हैं। अब बेचारा जो हमको दुख दे रहा है वह तो डिलीवरी कर रहा है, हमारे ही दुख हमको पहुंचा रहा है। तो जिसके माध्यम से हमको दुख आ रहा है उसको धन्यवाद देना चाहिए, आपका बहुत धन्यवाद, हम तो उसी को ही डांटते हैं, उसी के प्रति ईर्ष्या करते हैं। तो इस प्रकार इस संसार में आग लगी है और वह आग हमारे कर्म के कारण हम सब लोग दुखी हैं और इसको कोई बुझा नहीं सकता है, और हम चाहे भी तो इस दुख से मुक्त नहीं हो सकते हैं। इस संसार में कोई व्यक्ति किसी को दुख से मुक्त नहीं कर सकता है। मान लो कुछ लोग सोचते हैं कि मैं फलाने को सुखी कर दूंगा, लेकिन कैसे करोगे? मात्र पैसों से कोई सुखी नहीं हो जाता है। आपने किसी को 1 लाख रुपया दान में दे दिया, लेकिन कब तक टिकेगा? किसी को भोजन करा दिया, कब तक टिकेगा पेट में? इस संसार में सब लोग दुखी हैं, और जैसे जंगल में दावा अग्नि लगती है और उस दावा अग्नि को एक ही व्यक्ति बुझा सकता है, वो है बादल से होने वाली बारिश, घना घनत्वम। जैसे जंगल की दावा अग्नि को बारिश ही बुझा सकती है, वैसे इस संसार में लगी हुई आग को मात्र गुरु ही बुझा सकते हैं। संत न होते जगत में तो जल जातो संसार। गुरु की कृपा से ही हमारे हृदय में चित्त में जो आग लगी है वह आग बुझ सकती है। और गुरु की कृपा कैसे होती है? गुरु की कृपा होती है उनकी वाणी से, उनके उपदेश से। गुरु मुख पद्म वाक्य चीते ते करिय एक्य। गुरु के मुख कमल से जो वाक्य निकलते हैं, जो उपदेश निकलते हैं, वही हमारे चित्त को पवित्र करते हैं, शुद्ध करते हैं। तो गुरु का कर्तव्य होना चाहिए अपने शिष्य को ज्यादा से ज्यादा उपदेश दे। कभी कभी होता है शिष्य लोग उपदेश सुनना नहीं चाहते, परंतु गुरु का कर्तव्य वे उसे सुनाते हैं। और भगवान ऋषभ देव कहते हैं जो गुरु अपने शिष्य को इस प्रकार से शुद्ध उपदेश नहीं देता है वह गुरु गुरु नहीं है, गुरु न सस्यात। फिर आगे कहते हैं स्वजनन न सस्यात। तब हमारे मन में एक प्रश्न हो सकता है कि मान लो यदि किसी के गुरु हैं और ऐसा शुद्ध उपदेश नहीं देते हैं, वैसे तो गुरु तो प्रवचन करते ही हैं, लेकिन इतना परफेक्ट और शास्त्र से अनुकूल यदि प्रवचन न हो तो उस गुरु को त्याग देना चाहिए, क्योंकि जो गुरु वेदव्यास जी के द्वारा दिए हुए भागवत और गीता के शुद्ध उपदेश को नहीं बताता है वह गुरु है ही नहीं, उसको त्यागने की कोई बात ही नहीं है। जैसे आज से बहुत वर्ष पूर्व भगवान श्री विष्णु ने वामन अवतार धारण किया और अपने भक्त इंद्र को स्वर्ग का राजा बनाने के लिए वह भगवान वामन देव बलि महाराज के पास गए। बलि महाराज असुरों के सम्राट थे। बिठाओ उसे। बलि महाराज असुरों के राजा थे और उस समय बलि महाराज इंद्र के साथ युद्ध करके वह स्वयं स्वर्ग के राजा बन गए थे। तब भगवान वामन बलि महाराज के यज्ञ में गए। बलि महाराज उस समय 100वां अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे। वैसे इंद्र के साथ युद्ध करके जीत कर बलि महाराज ने राज्य ले लिया था, परंतु वह लीगली नहीं था। इस संसार में यदि कोई 100 अश्वमेघ यज्ञ करता है तो लीगली वह स्वर्ग का राजा बन सकता है। 99 अश्वमेघ यज्ञ हो चुके थे, 100वां अश्वमेघ यज्ञ हो रहा था और बलि महाराज के द्वारा वह 100वां अश्वमेघ यज्ञ हो जाए तो सदा सदा के लिए स्वर्ग का आसन चला जाए। इसलिए साक्षात भगवान वामन बलि महाराज के यज्ञ में गए। बलि महाराज ने भगवान वामन का स्वागत किया। वे जानते नहीं थे कि ये भगवान है, क्योंकि भगवान वामन एक बाल ब्रह्मचारी का रूप लेकर गए थे। बलि महाराज अपने द्वार पर आए हुए ब्राह्मणों का स्वागत किए, सत्कार किए और ब्राह्मण ने कहा, हे बलि महाराज, मुझे आपसे दान में 3 पग भूमि चाहिए। बलि महाराज ने कहा, और ज्यादा मांग लो, 3 पग से क्या होगा, 2-3 एकर मांग लो। भगवान वामन ने कहा, हम संतुष्ट ब्राह्मण हैं। वो तो बाद में पता चलेगा कितने संतुष्ट हैं, लेकिन बलि महाराज को कहने लगे, हम संतुष्ट ब्राह्मण हैं और जितनी जरूरियात है उतना ही हम रखते हैं, हमको ज्यादा नहीं चाहिए। तब शुक्राचार्य, बलि महाराज के गुरु थे शुक्राचार्य, और शुक्राचार्य कविनाम उष्णाम कवि, बहुत बड़े विद्वान थे और ऐसी विद्या जानते थे कि कोई व्यक्ति मर गया हो वे मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर सकते थे। एक्चुअली ये बलि महाराज भूतकाल में मर चुके थे, परंतु उनके गुरु शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या से अपने शिष्य बलि महाराज को प्रकट जन्म दिलवाया, जीवित किया। ऐसे गुरु बाजू में बैठे थे और शुक्राचार्य समझ गए कि ये कोई बाल ब्रह्मचारी नहीं है, साक्षात विष्णु है और बलि महाराज से सब कुछ छलने के लिए आया है। शुक्राचार्य ने कहा बलि महाराज को कि बलि, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये लगता है विष्णु है। तब बलि महाराज ने कहा, प्रभु गुरुजी जो भी है मेरे आंगन में आए हैं, चलकर मेरे पास आए हैं और मैं निश्चित उनको दान दूंगा। शुक्राचार्य ने बहुत रोका, बलि ऐसा मत करो, क्रोधित हो गए। बलि महाराज ने कहा कि यदि यह विष्णु भी है तब भी मैं उसे 3 पग भूमि दान में दूंगा। और शुक्राचार्य क्रोधित हो गए, ना कह रहे थे। तब जिस शुक्राचार्य ने, जिस गुरु ने बलि महाराज को जीवित किया था, उसी गुरु को बलि महाराज ने छोड़ दिया, त्याग दिया। बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य को त्याग दिया, लेकिन फिर भी इस संसार में अमर हो गए। क्यों? क्योंकि वे शुक्राचार्य जो थे वेद से विरुद्ध बात कर रहे थे। इस संसार में वही गुरु गुरु है जो वेदों के, जो शास्त्र के, जो गीता और भागवत के अनुकूल बात करे। शुक्राचार्य जैसे गुरु को बलि महाराज ने त्याग दिया, क्यों? क्योंकि उनका जो उपदेश था वह शुद्ध नहीं था। अरे किसी गुरु के द्वारा ऐसा उपदेश होना चाहिए कि एक जीव भगवान के पास जाए, एक जीव का भगवान के साथ संबंध हो, एक जीव भगवान के करीब जाए। परंतु ये गुरु तो भगवान से दूर लेके जाना चाहते थे, इसलिए बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य को त्याग दिया। क्यों? क्योंकि वह गुरु गुरु ही नहीं है जो अपने शिष्य को भगवान के साथ जोड़ाता नहीं है। गुरु न सस्यात्, और आगे कहते हैं स्वजनन न सस्यात्, वह स्वजन स्वजन नहीं है जो अपने परिवार में जो छोटे बच्चे हैं उनको भगवान से मिला न सके, उनको सच्चा उपदेश न दे सके। यहां पर भगवान ऋषभदेव सब के लिए बता रहे हैं कि गुरु को चाहिए अपने शिष्य को ऐसा उपदेश दे। परिवार में जो बड़े बड़े स्वजन हैं उनको चाहिए कि अपने परिवार में जो छोटे लोग हैं उनको ऐसा उपदेश दे। परंतु आज तो संसार में देखा गया है, परिवार में दो तीन बच्चे यदि भगवान की भक्ति भी करना चाहते हो तो परिवार वाले उसे ना कहते हैं, ये क्या लगा रखा है अभी से, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ऐसे बूढ़े होने के बाद करना ये सब, हरे कृष्ण बूढ़े होने के बाद करने की वस्तु है, बचपन में ही हरे कृष्ण कर रहे हो। तो भगवान ऋषभदेव ने कह दिया कि ऐसे स्वजन स्वजन नहीं है, स्वजनन न सस्यात्। और भगवान श्री रामचंद्र के भाई भरत ने भी कह दिया, रामायण में जब भगवान श्री रामचंद्र को वनवास दिया गया और भगवान रामचंद्र वन में चले गए, और उस समय भरत जी जो थे उनके भाई ननिहाल से आए और पता चला कि मेरे भाई राम चले गए हैं, यहां पर उनको बहुत मनाया कि अब राम गए हैं तो आप राज्य करो, आप राजा बनो, आप राज्य संभालो। भरत जी आए, पता चला राम चले गए हैं, बहुत लोगों ने मनाया आप राज्य करो राज्य करो, परंतु भरत जी ने ना कह दिया, मैं राज्य नहीं करूंगा। मोही राज हटू दई हुई जब ही रसा रसातल जाई ही तब ही, जिस दिन मैं राजा बनूंगा मैं सत्य कहता हूं उस दिन ये रसा यह पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, क्योंकि अयोध्या का राजा एकमात्र राम हो सकता है, अन्य कोई नहीं हो सकता। और मैं तो जा रहा हूं मेरे भाई राम को मिलने के लिए, यदि आपको भी जीवन में सौभाग्य चाहिए, सुखी होना है तो आप सब मेरे साथ चलिए। उस समय अयोध्या में रहने वाले सब लोग भरत के साथ भगवान राम को मिलने के लिए जा रहे हैं, सब लोग, बहुत बड़ा जुलूस निकला, बहुत सारे लोग जा रहे हैं। उस समय कुछ लोग आए, भरत जी हम लोग आपके साथ भगवान से मिलने नहीं आ सकते हैं। भरत जी ने कहा क्या हुआ? बोले बच्चों की एग्जाम चल रही है ना, कुछ लोगों ने कहा हम लोग आपके साथ नहीं आ सकते हैं। बोले क्या हुआ? बोले ऑफिस में कौन जाएगा। कुछ लोगों ने कहा कि हम लोग आपके साथ नहीं आ सकते हैं। बोले क्यों? बोले घर वाले ना कह रहे हैं। तब भरत जी ने रामायण में अमर वचन कहे हैं, कहते हैं जरव सु संपति सदन सुहद सुख मातु पितु भाई, अरे जला दो उस संपत्ति को जो संपत्ति भगवान को मिलने के लिए बाधा बन रही है, जला दो उस ऑफिस को जो ऑफिस भगवान से मिलने के लिए बाधा बन रही है, जला दो उस स्वजनों को जो भगवान को मिलने के लिए बाधा बन रहे हैं। जर उस संपत्ति सदन सुहद सुख मातु पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद करे न सहस सहाय। इस संसार में धन ऑफिस स्वजन मां बाप ये क्यों मिले हैं? भगवान का संबंध करने के लिए, भगवान के करीब जाने के लिए। ये हमारा कुटुंब, हमारा फैमिली, हमारे स्वजन क्यों है? क्योंकि हमको हेल्प करें, मदद करें, हम भगवान के पास जाए। परंतु वही फैमिली, वही स्वजन यदि हमें भगवान से दूर कर रहे हैं तो वह स्वजन स्वजन नहीं है। भगवान ऋषभदेव कहते हैं स्वजनन न स्यात्, वह स्वजन नहीं है। यदि हमें भी परिवार का स्वजन बनना है तो हमारे परिवार में जो बच्चे हैं उनको ये उपदेश देना चाहिए कि हे मेरे बच्चों, हम तो नहीं कर पाए परंतु आप कीजिए, भगवान की प्राप्ति करो। या दुस्त्यज, उस मृत्यु के ऊपर विजयी कर लो भगवान की भक्ति करके, इसे स्वजन कहते हैं। और जो इस प्रकार से भगवान के पास पहुंचने के लिए बाधा देते हैं वो स्वजन स्वजन नहीं है। एक बार मीराबाई ने गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्र लिखा। मीराबाई को तो जानते हैं, हमारे मारवाड़ में बहुत बड़ी भक्ता हो गई, जिसको आज पूरी दुनिया जानती है। बेचारी नारी के शरीर में एक स्त्री थी, परंतु वह स्त्री गिरधर गोपाल को ही, कृष्ण को ही अपना पति मान चुकी थी। उन्होंने अपना मन भगवान कृष्ण को दे दिया था। पति तो मर गए, भजन में बाधा हो रही है, घर के जो स्वजन थे वह उनको ठीक से भक्ति नहीं करने देते थे। एक बार दुखी होकर मीराबाई ने गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्र लिखा कि हे गोस्वामी जी, मुझे कृष्ण की भक्ति करनी है परंतु घर के जो स्वजन है मुझे भक्ति में बाधा दे रहे हैं, क्या करूं। तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तर दिया कि जो स्वजन भक्ति में बाधा देते हैं वह स्वजन स्वजन नहीं है। भगवान ऋषभदेव जो कहते हैं वही बात गोस्वामी ने कहा, वह स्वजन स्वजन नहीं है। ऐसे स्वजनों को तजिए कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेह है। भले वो प्रेम करने का नाटक करते हो, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, बहुत प्रेम करता हूं, मंदिर में मत जा, ये प्रेम का नाटक है। भले वो प्रेम का नाटक करते हो परंतु उसे करोड़ों वैरी के समान त्याग देना चाहिए जो भगवान की भक्ति में बाधा बने। तो मीराबाई ने उत्तर दूसरा पत्र लिखा, गोस्वामी जी यदि स्वजनों को त्याग दूंगी तो संसार वाले क्या कहेंगे। तब गोस्वामी जी ने एक भजन का निर्माण किया, अद्भुत भजन था। हमारे पास समय तो नहीं है परंतु उस भजन के बोल यही गोस्वामी जी ने लिखे कि बलि महाराज ने अपने गुरु को त्यागा, क्या संसार के लोग उसे धिक्कारते हैं, क्या उसका नाश हुआ। नहीं, बलि महाराज ने अपने गुरु को त्यागा, भगवान का अनुग्रह प्राप्त हुआ, भगवान की कृपा मिली। भरत महतारी, भरत ने अपनी मां को त्यागा, प्रहलाद ने अपने पिता को त्यागा, ध्रुव ने अपने स्वजन को त्यागा, और ये सब लोग शास्त्र के पत्ते पर अमर हो गए। क्यों? क्योंकि ये सब लोग ने अपने परिवार को, स्वजनों को त्यागा कृष्ण के लिए। इस संसार में हमारे जितने भी स्नेही संबंधी हैं, क्यों? क्योंकि भगवान की प्राप्ति हो, इसके लिए। अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि हमारे आंखों में जो काजल हम लगाते हैं ना, वो काजल क्यों लगाते हैं, जिसके द्वारा आंखों का तेज बढ़े। आंखों का तेज बढ़ाने के लिए हम काजल लगाते हैं, परंतु जो काजल आंख को फोड़ देती है उस काजल का क्या काम। काजल का काम है आंखों का तेज बढ़ाना, लेकिन जिस काजल से आंख ही फूट जाए वह काजल का कोई काम नहीं है। ये स्वजन, ये परिवार, ये जो भी है भगवान की भक्ति में अनुकूलता लाने के लिए है, और यदि बाधा देते हैं तो उसका कोई काम नहीं है। स्वजनन न स्यात्, भगवान ऋषभदेव कहते हैं वह स्वजन स्वजन नहीं है। और ऐसे स्वजन जो भक्ति में बाधा देते हैं उसको त्यागने से किसी भी प्रकार का दोष भी नहीं है। और फिर कहते हैं पिता न स्यात्, वह पिता पिता नहीं है जो अपने पुत्र को यह उपदेश नहीं देता है, जो अपने पुत्र को भक्त न बना सके। एक पिता को पुत्र पैदा करने के लिए 100 बार सोचना चाहिए, क्या मैं मेरे पुत्र को भक्त बना सकता हूं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप ऐसा मत समझिए कि प्रभु जी अपना ही कुछ बोल रहे हैं। ये जो भी बोल रहा हूँ श्लोक का अनुवाद मात्र कर रहा हूँ, आप सबके हाथ में श्लोक है, 18 नंबर के श्लोक में देख सकते हो। श्रील प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत महाराज अनेकों बार अपने ग्रंथों में लिखे हैं, आप एक नहीं 100 पुत्र उत्पन्न कर सकते हो यदि उनको भक्त बना सको, और यदि अपने पुत्र को भक्त नहीं बना सकते हो तो एक पुत्र को भी जन्म देने का अधिकार पिता को नहीं है, पिता न स्यात्। इसलिए पिता बनने के लिए 100 बार सोचना चाहिए कि मेरे पुत्र का भविष्य क्या होगा, और सबसे पहले स्वयं को भक्त बनना चाहिए। पिता श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद में प्रहलाद महाराज की कथा आती है, आप सब लोग जानते हैं प्रहलाद, वैसे तो 5 साल के बालक परंतु महाराज की पदवी प्राप्त कर लिया। प्रहलाद महाराज के पिता थे हिरण्यकश्यपु, लेकिन प्रहलाद महाराज ने जीवन भर तक अपने पिता को पिता नहीं कहा। क्यों? जब प्रहलाद महाराज अपने पिता को कुछ कभी बुलाते थे तो कहते हैं तत्साधु मनिये असुर वर्य देहि नाम, हे असुरों के राजा, हे असुरों के सम्राट, पिता नहीं कहते थे। वहां पर प्रश्न उठा, ये प्रहलाद इतने गुणवान गुणशील होते हुए भी अपने पिता हिरण्यकश्यपु को पिता क्यों नहीं कह रहे हैं? तो वहां आचार्यों ने लिखा है क्योंकि हिरण्यकश्यपु पिता नहीं था, पिता उसे कहते हैं जो अपने पुत्र को भक्त बनाए, और हिरण्यकश्यपु तो प्रहलाद बेचारा भक्ति कर रहा था, उस भक्ति से दूर करना चाहता था। तो पिता का कर्तव्य है अपने पुत्र को उपदेश दे, जैसे भगवान ऋषभदेव अपने पुत्र को समझा रहे हैं, बिठाकर मना रहे हैं, उपदेश देने का कर्तव्य पिता का है। फिर यदि पुत्र न माने तो पिता के हाथ में नहीं है, लेकिन पिता का कर्तव्य है कि पूरा पूरा प्रयास करे अपने पुत्र को मनाने का। प्रयास किया, और यदि कोई पिता अपने पुत्र को नहीं मनाता है तो वो पुत्र का तो विनाश होगा ही, पिता का भी विनाश होगा। महाभारत में आप जानते हैं ना, धृतराष्ट्र को कितना समझाया विदुर जी ने, कहा धृतराष्ट्र को, धृतराष्ट्र जी यदि आप चाहो तो युद्ध रुका सकते हो, और यदि महाभारत का युद्ध हो गया तो करोड़ों लोग इस युद्ध में मर जाएंगे। नहीं माने धृतराष्ट्र। वेद व्यास जी ने समझाया धृतराष्ट्र जी अभी भी समय है, मान जाइए, आपके हाथ में सब कुछ है, परंतु नहीं माने। अंत में संजय ने मनाया, जब वेद व्यास जी से नहीं माने तो वेद व्यास जी ने अपने शिष्य संजय को भेजा कि आप धृतराष्ट्र के साथ रहो और महाभारत के युद्ध में जो भी होता है उनको दिखाओ। और धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो भगवद गीता कही गई वह सारी भगवद गीता भी सुनी। भगवद गीता के 2 श्रोता थे, अर्जुन और धृतराष्ट्र, क्योंकि वहां भगवान कृष्ण अर्जुन को रथ के ऊपर गीता सुना रहे थे और यहां वही गीता लाइव एज इट इज संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे थे। लेकिन अंतर कितना है दोनों श्रोताओं में, ये जो रथ के ऊपर बैठे हैं अर्जुन और वक्ता कृष्ण है, कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई। गीता सुनने के पहले अर्जुन का कहना यह था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, भीख मांग कर खा लूंगा परंतु युद्ध नहीं करूंगा। वे गांडीव हाथ से सरक गया, मुख में पनिस पसीना आ गया, धनुष बाण छोड़ दिए और बैठ गए। लेकिन जैसे ही कृष्ण ने भगवद गीता का ज्ञान दिया, अर्जुन खड़ा हुआ हाथ में धनुष बाण लेकर, कहा प्रभु किसको उड़ाना है बताइए, आप बताइए किसको पहले ले लूं। मान गया कृष्ण के समझाने पर, गीता के ज्ञान पर अर्जुन मान गया। लेकिन वही गीता धृतराष्ट्र सुना, और अंत में संजय ने कहा भी, प्रभु यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर, जहां पर कृष्ण होते हैं, जहां धनुर्धर अर्जुन है, वहीं पर विजय है, वहीं पर श्री है। आपके बच्चे धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र जी आपका पुत्र दुर्योधन हार जाएगा। उस समय भी गीता सुनने के बाद भी धृतराष्ट्र क्या करूं, ये मान नहीं रहा है। तो इस प्रकार धृतराष्ट्र ने जीते जी अपने पुत्र को नहीं मनाया, पुत्र में आसक्त होने के कारण। और इसी के लिए दुर्योधन का विनाश हुआ, दुर्योधन की सेना का, कौरवों का, अंत में धृतराष्ट्र का भी विनाश हो गया। यदि विनाश से बचना चाहते हैं, एक पिता का कर्तव्य है अपने पुत्र को यह उपदेश दे। और जो पिता अपने पुत्र को उपदेश नहीं देता है, पिता न स्यात। आगे कहते हैं जननी न स्यात, बहुत सुंदर श्लोक है। वह मां मां नहीं है जो अपने संतानों को उपदेश न दे, अपने संतानों को भक्त न बनाए। मां के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि बच्चा मां के गर्भ में रहता है, मां के कोख में पलता है, मां का संस्कार उसे मिलता है। आपने देखा कभी किसी ने ऐसा पूछा आपकी पितृभाषा कौन सी है, फादर लैंग्वेज कौन सी? यही कहते हैं आपकी मातृभाषा कौन सी, मदर टंग, मातृभाषा। क्योंकि बच्चे का मां के प्रति स्वाभाविक आकर्षण होता है। मां का कर्तव्य होता है अपने बच्चे को उपदेश दे, सिखाए। हमारे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र का सिंह कहा जाता है शिवाजी को, इतने प्रतापी शिवाजी हो गए। आपने इतिहास पढ़ा होगा हमारे महाराष्ट्र का, एक से एक लोगों को मारा। औरंगजेब जो खूंखार व्यक्ति था, और शिवाजी छोटे से बालक के समान थे, लेकिन इतना अद्भुत पराक्रम। शिवाजी हाथ में लंबे लंबे नाखून पहन कर गए, उसके पेट में पूरा हाथ डाल दिया और जितना भी आतर बातर सब कुछ बाहर निकाल दिया, जैसे भगवान नरसिंह ने हिरणाकश्यपु को फाड़ डाला। वैसे कहां से पराक्रम आया, एक से एक शिवाजी ने। कहा जाता है भवानी माता प्रकट हुई थी शिवाजी को तलवार देने के लिए, शिवा इस तलवार से युद्ध करना, तुम सदैव विजयी रहोगे। क्यों, इसका कारण क्या था? क्योंकि जब शिवाजी छोटे थे तब उनकी माने, जीजा माता ने शिवाजी को ये राम और कृष्ण की कथा सुनाई थी, ऐसे संस्कार दिए थे। और मां के संस्कार से ही बच्चे बड़े होकर सुसंस्कारी बनते हैं। तो जननी न सहया, वो मां मां नहीं है जो अपने पुत्र को ये उपदेश न दे। और आज की मां अपने बच्चों को लेकर थिएटर में जाती है। मुझे एक भक्त ने कहा था, प्रभु जी ये दृष्टांत मत देना आप प्रवचन, क्योंकि आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। मेरी वैल्यू भले कम हो, लेकिन मैं दूंगा दृष्टांत। मैं बहुत साल पहले एक फिल्म देखने गया था थिएटर में, और तब तो मैं इतना भक्त नहीं था, इसलिए थिएटर में गया था बॉम्बे सेंट्रल प्लाजा में। मेरे आगे एक महिला बैठी थी, अकेली आई थी और अपने छोटे से बच्चे को साथ में लेकर। तो फिल्म देख रहे थे, वो बच्चा तो क्या जाने कौन हीरो कौन हीरोइन, वो तो सो गया माँ के गोद में। और फिल्म में शुरू में फिल्म में गाना आया, तो एक हीरो था, वो 15-20 लड़कियों के साथ नाच रहा था और फेमस गाना था। वो बच्चा सो रहा था, माँ ने उस बच्चे को जगाया, बेटा बेटा देख देख बेटा देख देख बेटा। उस समय मैं सोचा कि वाह रे, माँ का स्वभाव है। अब वो बेटा बड़ा होकर दूसरी लड़की को लेकर भाग नहीं जाएगा तो क्या करेगा? फिर माँ बाप कहते हैं हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, तो क्या वो साधु बनेंगे फिल्म दिखाकर? कुछ लोग थिएटर में लेकर जाते हैं, तो कुछ लोग होम थिएटर को घर पर लाते हैं। पहले लोग थिएटर में जाते थे, अब थिएटर ही घर पर आ गया है, होम थिएटर। परंतु जननी न स्यात, मां को चाहिए अपने पुत्र को भक्ति में लगाए। वह मां मां है जो अपने पुत्र को भक्त बनाए। रामायण का प्रसंग, प्रसिद्ध प्रसंग, जब भगवान श्री रामचंद्र वनवास में जाने की तैयारी हो गई और भगवान श्री रामचंद्र वनवास जा रहे थे, जगत जननी माता सीता भी जा रही थी, उस समय लक्ष्मण को पता चला कि मेरे बड़े भाई राम वन में जा रहे हैं। लक्ष्मण दौड़ते दौड़ते आए, कहा भैया मैं भी आपके साथ चलूंगा। राम ने कहा लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न ननिहाल गए हैं, तुम घर पर रहो, माता पिता की सेवा करो। लक्ष्मण नहीं माने, राम ने बहुत मनाया, लक्ष्मण नहीं माने। तब राम ने अंत में कहा ठीक है, आपको मेरे साथ 14 साल आना है, तो लखन एक काम करो, अपनी माँ सुमित्रा से आदेश लेकर आओ, जब अपनी माँ सुमित्रा आदेश देगी तब तुम मेरे साथ चल सकते हो। गोस्वामी जी लिखते हैं उस समय लक्ष्मण जी को एक एक कदम एक एक युग के समान लग रहे थे। लक्ष्मण जी गए अपनी माँ सुमित्रा के पास और जाकर प्रणाम करके कहा माता जी मैं आज आपसे एक वस्तु मांगने आया हूं। बोले क्या चाहिए बेटा? कहा माते मेरे बड़े भाई राम 14 साल के लिए वन में जा रहे हैं, मुझे उनकी सेवा करने के लिए प्रभु के साथ जाना है, क्या मैं भगवान के साथ प्रभु राम के साथ बड़े भाई के साथ जाऊं? तब मां सुमित्रा कहती है लखन प्रभु की सेवा करने के लिए जाना है, परब्रह्म साक्षात ईश्वर भगवान जो हमारे घर पर है उनकी सेवा करने की तेरी इच्छा हो रही है और तुझे उनके साथ जाना है, और पागल मुझे पूछने आ गया। अरे भगवान की सेवा करनी है उसमें मुझे पूछने की क्या आवश्यकता है? आज मैं धन्य हो गई, आज मैं मां हो गई, क्योंकि मेरा पुत्र आज राम की सेवा करने के लिए जा रहा है। देखिए एक मां ने कहा, और वो मां सुमित्रा इस जगत की नारियों को उपदेश दे रही है। इस संसार में वही मां मां है जो अपने पुत्र को भगवान राम और कृष्ण की सेवा में भेजे, और जिसका पुत्र राम और कृष्ण की सेवा नहीं करता है मां मां नहीं, उसे तो अच्छा है वो पत्थर को पाले। पुत्रवती जुबती जग सोई रघुपति भगत जातु से तो होई,
पुत्रवती जुबती जग सोई रघुपति भगत जातु से तो होई,
नतरु बांज बलि बानी बियानी राम विमुख सुत ते हित जानी,
नतरु बांज बलि बानी बियानी राम विमुख सुत ते हित
जानी। लक्ष्मण जाओ जाओ और जाकर राम की सेवा करो, क्योंकि आज मैं प्रसन्न हूं, आज मेरा पुत्र प्रभु की सेवा करने जा रहा है। वास्तव में बेटा तुम क्या समझ रहे हो, राम को कैकेयी ने वनवास दिया है इसलिए जा रहे हैं? नहीं। तुम क्या समझ रहे हो, राम के कर्म में वनवास लिखा है? नहीं। अरे राम इसलिए वन में जा रहे हैं क्योंकि राम चाहते हैं कि तुम उनकी सेवा करो और तुम्हारा सौभाग्य का उदय हो जाए।
तुम्हारे ही भाग राम वन जाए, दूसर है तात कछु नाही,
तुम्हारे ही भाग राम वन जाए, दूसर है तात कछु नाही।
तुम्हारा भाग्य है, तुम्हारे भाग्य के कारण राम वन में जा रहे हैं, अन्यथा राम को वन में जाने का और कोई कारण नहीं है। बेटा मैं तुम्हें आदेश दे रही हूं कि आज से राम ही तुम्हारे पिता है और सीता ही तुम्हारी मां है, क्योंकि बेटा जहां पर राम है वहीं पर तुम्हारी अयोध्या है, जहां पर राम है वहीं पर तुम्हारा घर है। तुम जाओ और ऐसी सेवा करना, ऐसी सेवा करना कि 14 साल में एक पल के लिए भी राम को अयोध्या की याद ना आए।
पुत्रवती जुबती जग सोई
रघुपति भगत जा तुसी तू होई
पुत्रवती जुबती जग सोई रघुपति भगत जा तुसी होई।
माता सुमित्रा ने अपने पुत्र लखन को भेज दिया जाइए, इसे माँ कहते हैं जो अपने पुत्र को भक्ति सिखाए, भगवान के चरणों में भेजे। तो आज की माओ के लिए बहुत सुंदर उपदेश भगवान ऋषभदेव दे रहे हैं। जननी वही है जो अपने पुत्र को भक्त बनाए, अन्यथा जननी न स्यात्, वह जननी जननी नहीं है। आगे कहते हैं देवम न तत् स्यात्, वह देवता देवता नहीं है जो अपने उपासकों को वैकुंठ में न भेज सके, अपने उपासकों को ये उपदेश न दे सके। वह देव देवता देवता नहीं है, वही देवता देवता है जो अपने उपासकों को मृत्यु से बचा ले, वैकुंठ प्राप्त अमरत्व प्रदान कर दे। इस संसार में कुछ लोग अनेक देवताओं के उपासक हैं, देवताओं के पास जाते हैं, परंतु देवताओं के द्वारा ऐसा दिव्य उपदेश प्राप्त नहीं होता है। वह देवता देवता नहीं है। तो देवता देवता तब है जब ऐसा उपदेश दे। और पति चसस्यात्, वह पति पति नहीं है जो अपनी पत्नी को भक्त न बनाए। एक पति को चाहिए अपना पूर्ण प्रयास करके अपनी पत्नी को भक्त बनाए। इस प्रकार भगवान ऋषभदेव कह रहे हैं कि संसार में ये जितने भी लोग हैं, माँ पिता गुरु देवता स्वजन पति, ये सब को अपने आश्रितों को ये उपदेश देना चाहिए, और इस उपदेश के द्वारा ही उनका कल्याण होगा। उपदेश क्या है हम कल सुन रहे थे ना, हमारे लिए भगवान ऋषभदेव के बस 24 कार्य हैं जो हमको करने हैं, और उस 24 कार्य में सबसे पहला कार्य हंसे गुरु, हंस जैसा गुरु धारण करना और उस गुरु के आश्रय में रहकर भगवान की भक्ति करना। देखिए भक्ति करना बहुत उत्तम वस्तु है, लेकिन भक्ति भी स्वतंत्र नहीं होनी चाहिए, किसी गुरु के अंतर्गत रहकर। स्वतंत्र भक्ति करने से आप कितनी भी भक्ति करोगे आपको फल नहीं मिलेगा, बिना गुरु बनाए भक्ति का भी फल नहीं मिलता है। एक बार एक पंडित जी किसी के घर पर भागवत कथा करने गए, 7 दिन की भागवत कथा थी, और रोज कथा में कहते थे आप भगवान का नाम जपिए संसार के सारे बंधन टूट जाएंगे। दूसरे दिन भी भगवान का नाम जपिए संसार के सारे बंधन टूट जाएंगे रोज। 5वें दिन 6वें दिन जब वो पंडित जी कथा करके अपने घर पर जा रहे थे, तो उस यजमान के घर पर एक तोता था जो पिंजड़े में बंद था। वो लोहे के पिंजरे में बंद तोते ने उस पंडित जी को बुलाया, यहां पर आइए मेरा एक प्रश्न है। बोले श्रोताओं में से किसी ने प्रश्न नहीं पूछा, तुम्हारा प्रश्न? बोले हाँ मेरा एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है? बोले आप रोज 6 दिन से कह रहे हो भगवान का नाम लो सभी बंधन टूट जाएंगे, भगवान का नाम लो सभी बंधन टूट जाएंगे। मैं 6 दिन से भगवान का नाम ले रहा हूं, सभी बंधन टूटने की बात दूर रही है, लोहे का बंधन नहीं टूटा। तो क्या आप झूठ बोल रहे हो? तब पंडित जी ने कहा देखो आप अब तक भगवान का नाम ले रहे थे स्वतंत्र बिना गुरु बनाए, आप गुरु बना लो तुरंत छूट जाओगे। तो तेने सोचा आपसे बड़े गुरु कौन मिलेंगे, चलो आपको ही गुरु बनाए। बोले गुरु जी आज से मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे गुरु हो, मुझे उपदेश दीजिए। गुरु जी ने कान में कुछ उपदेश दिया, एक मंत्र दिया, देते ना मंत्र कान में, गुरु जी ने तोते के कान में मंत्र दे दिया और मंत्र का भावार्थ यह था कि कल के दिन में उपवास करना। गुरु जी कहते हैं ना एकादशी का व्रत करना, कभी कभी हम लोग समझ नहीं पाते ये क्यों कहते होंगे, ये लोग हमको परेशान करना चाहते हैं, ये भी आत्मा को तड़पाते हैं। लेकिन गुरुजी एकादशी व्रत करने के लिए, निर्जला करने के लिए जब कहते हैं तो उसमें कुछ तत्व होता है, कुछ कारण होता है। ये गुरुजी ने कहा कि कल निर्जला उपवास करना, मौन व्रत धारण करना और भगवान का ध्यान करना, बस हिलना मत। दूसरे दिन वह तोता भोजन पानी खाना पीना बंद, बोलना भी बंद, यहां तो बोल रहा है, और तोता मरा हुआ सा बैठ गया। और उस यजमान को लगा कि ये तोता सुबह से कुछ नहीं खाया, दोपहर को भी नहीं खाया, रात को भी नहीं खाया। जब एक दिन का उपवास तोते ने किया तो यजमान को लगा कि लगता है ये मर गया है, और मरे हुए शव को घर पर नहीं रखना चाहिए, अपशुकन होता है। तुरंत पिंजरे को लेकर बाहर गए और तोते को बाहर रख दिया, पिंजरे को लेकर घर पर आ गए, तोता फर्र करके उड़ गया, स्वतंत्र। देखिए तोते के पास मंत्र था, लेकिन फिर भी जब तक गुरु नहीं बनाया तब तक वह बंधन से मुक्त नहीं हो पाया। ऐसे हम भी जब तक योग्य गुरु, शुद्ध गुरु की शरण में नहीं जाएंगे तब तक गीता और भागवत और भगवान का नाम होते हुए भी हमारा उद्धार नहीं होगा। इसलिए भगवान ने जो हमें बुद्धि दी है उस बुद्धि को योग्य गुरु को चुनने में लगाना चाहिए। तो पहला कार्य क्या है, गुरु धारण करना भगवान ऋषभदेव। दूसरा कार्य कहते हैं मई भक्तिया, कहते हैं कि मेरी भक्ति करनी चाहिए। भक्ति का सीधा अर्थ है भगवान की सेवा, एक्टिव डिवोशनल सर्विस। भक्ति का अर्थ है सेवा, और भक्ति का दूसरा अर्थ है प्रेम। ये सेवा और प्रेम दोनों साथ में चलता है। आप जिसे प्रेम करते हो उसकी सेवा करोगे ही, और आप जिसकी सेवा करते हो प्रेम है इसलिए सेवा कर रहे हो, फोकट में थोड़ी कोई सेवा करता है। तो सेवा और प्रेम इसी का नाम है भक्ति। भगवान की आप सेवा करते हो, भगवान से प्रेम करते हो, इसे भक्ति कहते हैं। लेकिन भगवान के प्रेम करने के कुछ तरीके होते हैं, है? हम हमारे हिसाब से कम कहेंगे मैं तो भगवान से प्रेम करता हूं, बिस्तर में सोए सोए ध्यान करता हूं। हम लोग भक्ति करते हैं, हम लोग मन में करते हैं। आप लोग ये बाहर दिखाते हो ना, हम लोग मन में करते हैं। आपके मन में क्या चल रहा है वो तो परमात्मा ही जानते हैं। भगवान को प्रसन्न करना जो है उनका कुछ तरीका होता है, शास्त्र में बताया है। भगवान ही कहते हैं मुझे प्रसन्न करना है तो 9 प्रकार के तरीके के द्वारा मुझे प्रसन्न कर सकते हो, जिसे नवदा भक्ति कहते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार के जो उपाय हैं, ये 9 प्रकार के जो कार्य हैं, 9 प्रकार के जो साधन है, इस 9 प्रकार के कार्य के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। और इस 9 प्रकार के कार्य में प्रत्येक कार्य अपने आप में पूर्ण है। जैसे ये नवदा भक्ति में सबसे पहली भक्ति है श्रवणम, सुनना। श्रवण का अर्थ है सुनना, भगवान की कथा, भगवान का नाम, ये सुनना एक भक्ति है। आप ऐसा मत समझो भक्ति माने सब कुछ छोड़कर मंदिर में बैठ जाओ, नहीं। आप कहीं भी हो, कहीं भी रहते हो, जहां हो वहां रहकर भगवान की कथा सुनोगे, श्रवण करोगे, भक्ति। तब कोई कह सकता है कि बस मात्र सुनने से भक्ति हो जाएगी, बोले हां, सुनने से भगवान मिल जाएंगे। बोले इतिहास में किसी को ऐसा मिला है भगवान केवल सुनने से? क्योंकि आज तो कितना योगा करते हैं, सिर नीचे पांव ऊपर हैं, कपाल भाती भस्ती का, बेचारे थक जाते हैं कर करके, ध्यान करते हैं, दान करते हैं, तपस्या करते हैं, कितना प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान नहीं मिलते हैं। तो खाली सुनने से भगवान मिल जाएंगे? बोले हाँ। कोई उदाहरण कोई दृष्टांत है आपके पास इतिहास में? बोले हजारों दृष्टांत है, लेकिन ज्वलंत अभी अभी का एक दृष्टांत, महाराज परीक्षित जिसको श्राप लगा था 7 दिन के बाद तक्षक नाग आकर डस लेगा, मर जाओगे। लेकिन महाराज परीक्षित ने अन्य कोई कार्य न करके वे हरिद्वार में गंगा के तट पर बैठ गए और सुखदेव गोस्वामी उसे भागवत सुनाने लगे, और कुछ नहीं किया। महाराज परीक्षित मात्र सुखदेव गोस्वामी के मुख से इसी भागवत कथा को सुने, और ज्यादा दिन भी नहीं, केवल 7 दिन। और सातवां, जब कथा का 7वां दिन चल रहा था, तो 7वें दिन सब हजारों के सामने देखते देखते भगवान के 4 पार्षद शंख चक्र गदा पद्म पीताम्बर कौस्तुभ मणि और अद्भुत विमान लेकर आए। परीक्षित महाराज को विमान में बिठाकर भगवान के धाम में लेकर चले गए। केवल कथा सुनकर, श्रवण करके, महाराज परीक्षित मात्र यह श्रवण करके भगवान के धाम में चले गए। कितना सुंदर साधन है, कोई कष्ट नहीं, कोई तकलीफ नहीं। हाँ, यहाँ तो थोड़ी गर्मी हो रही है आपको, लेकिन ये तो एयर कंडीशन का स्वभाव हो गया, इसलिए गर्मी हो रही है। दूसरी भक्ति कौन सी है? कहते हैं कीर्तन। कीर्तन के द्वारा हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। कीर्तन श्रवण जो है कान से होता है, कीर्तन जो है मुख से होता है। कीर्तन का अर्थ है भगवान का नाम लेना या भगवान का गुणगान गाना, भजन गाना, कीर्तन गाना, नाम लेना, इसे कीर्तन कहते हैं। कीर्तन के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। बोले इतिहास में कोई ऐसा है? बोले हाँ, वैया सखी सकीर्तने, श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित वैया सखी सकीर्तने। वैया सखी वेद व्यास के पुत्र सुखदेव गोस्वामी मात्र कीर्तन करके, सुखदेव गोस्वामी के हाथ में कभी माला जोली देखा? कभी नहीं। सुखदेव गोस्वामी को कभी दान देते देखा? कभी नहीं। मात्र कीर्तन भक्ति करते थे, कीर्तन भक्ति के आचार्य, और कीर्तन करके भगवान के धाम को प्राप्त हो। तीसरा कार्य भक्ति का, तीसरा पहलू कहते हैं स्मरणम। श्रवण कान से होता है, कीर्तन मुख से होता है, और स्मरण जो है मन से होता है। आप बोल नहीं सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सुन नहीं सकते हो, भगवान ने कान नहीं दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्मरण तो कर सकते हो। बस भगवान का स्मरण कीजिए, स्मरण करना एक भक्ति है। बोले ऐसी भक्ति कौन करते थे? स्मरण भक्ति करके कौन भगवान को प्राप्त हुए? कहते हैं प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज असुर कुल में जन्म लिए थे, जहां पर माला जपने का कोई प्रश्न नहीं है, जहां पर प्रवचन, हिरण्यकश्यपु के राज्य में कोई प्रवचन करने जाए ये कभी हो नहीं सकता है। नारद मुनि 24 घंटा भगवान का नाम लेते हैं, प्रवचन करते हैं। हिरण्यकश्यपु के राज्य में जब जाते थे तो यही कहते थे, हिरण्यकश्यपु महाराज की। जब नारद जैसे नारद वहां प्रवचन नहीं कर सकते हैं, तो अन्य की प्रवचन की बात तो दूर रही। प्रहलाद न तो प्रवचन सुन सकते थे, न कीर्तन कर सकते थे, तब प्रहलाद कौन सी भक्ति करते थे? स्मरण भक्ति, मन ही मन में भगवान विष्णु का स्मरण करना। और मात्र स्मरण करके प्रहलाद महाराज भगवान को प्राप्त हो गए। चौथी भक्ति कहते हैं अर्चनम, भगवान की सेवा पूजा, आरती, दिया, अगरबत्ती। पृथु महाराज स्मरण भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त हुए। वंदनम, भगवान को प्रणाम करना भी एक भक्ति है। आप कभी भी किसी मंदिर में जाइए, कृष्ण को प्रणाम कर दीजिए, कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन हम लोग इतना भी नहीं कर सकते हैं। प्रणाम करने की महिमा शास्त्र में बहुत है। प्रणत देहि नाम पाप कर्षनम, गोपिया तो भागवत के 10वें स्कंद गोपी गीत में यहां तक कह देती हैं कि हे कृष्ण, ये देही जीव, ये पापी अपराधी जीव जब आपके चरण में प्रणति प्रणाम करता है, तो आप उसके सारे पाप कर्षणम खींच लेते हैं। भगवान को प्रणाम करने वाला व्यक्ति सभी पापों से मुक्त है। वेदव्यास जी ने तो महाभारत में यहां तक लिख दिया, कृष्ण को एक बार प्रणाम करो और 10 अश्वमेघ यज्ञ करो, ये दोनों बराबर है। अश्वमेघ यज्ञ माने कलयुग में तो इम्पॉसिबल, जो त्रेता युग में होता था। 10 अश्वमेघ यज्ञ करना और कृष्ण को एक बार प्रणाम करना दोनों बराबर, लेकिन वेदव्यास ने कहा यह भी थोड़ा गड़बड़ है। तब वेदव्यास ने महाभारत में लिखा 10 अश्वमेघी पुनरेति जन्म, 10 अश्वमेघ करने वाला व्यक्ति फिर से ही संसार में आता है और मोह माया के चक्कर में फंस जाता है, परंतु एक बार किसी ने कृष्ण को प्रणाम कर लिया, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, वे सदा सदा के लिए वैकुंठ में चला जाता है। यह है प्रणाम की महिमा। बोले ऐसा प्रणाम करके कोई भगवान को प्राप्त हुए? हां, अक्रूर जी कंस की ऑफिस में काम करते थे, न माला न प्रवचन न कुछ नहीं, और मात्र कृष्ण को प्रणाम करके कृष्ण को प्राप्त हो गए। प्रणाम करना चाहिए, भगवान प्रसन्न होते हैं। दंडवत प्रणाम, प्रणाम की विधि है अष्टांग प्रणाम और पंचांग प्रणाम। एक ऐसा प्रणाम होता है जिससे हमारे शरीर के 8 अंग भूमि को स्पर्श होते हैं, और एक ऐसा प्रणाम होता है जिससे शरीर के 5 अंग भूमि को स्पर्श हो। तो जो पुरुष होते हैं उसे दंडवत डंडे की तरह गिर जाना है, सीधा प्रणाम, और जो स्त्री होती है उसे आधा प्रणाम करना चाहिए। यह शास्त्र का नियम है। और प्रणाम कैसे होना चाहिए? दंडे के समान, दंडवत, जैसे डंडा गिर जाता है ना ऐसे सीधा, वैसे हमें भी भगवान के सामने गिर जाना है। कुछ लोग स्लो मोशन में धीरे 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 धीरे, फिर मट्टी ऐसे ऐसे करके साफ करके, फिर खैर कैसे भी भगवान के चरणों में झुकेंगे तो निश्चित भगवान कृपा देंगे। वंदन करना एक भक्ति है। तत्पश्चात पाद सेवनम, भगवान के चरणों की सेवा करना जैसे लक्ष्मी जी करती हैं। साख्यम, भगवान को सखा मानना, साख्य रूप में भगवान की उपासना करना जैसे अर्जुन ने किया। और आत्मनिवेदनम, अपना सब कुछ भगवान को दे देना।
मानस देह गेह जो कीछु मोर अर्पिलो तू यापदे नंद किशोर।
ठाकुर भक्तिनोद लिखते हैं, मानस देह गेह जो किछु मोर। मानस का अर्थ होता है मन, मेरा शरीर, मेरा घर, स्वजन, पुत्र, पत्नी, ये जो कुछ भी है, अर्पिलु तुया पदे, हे प्रभु, हे नंद किशोर, ये सब कुछ आपके चरणों में अर्पण करता हूं। अपना सब कुछ भगवान को दे देना, इसे आत्मनिवेदन कहते हैं। और ये कार्य बलि महाराज ने किया है, सब कुछ भगवान को दे दिया, इसे कहते हैं भगवान की भक्ति। और ये सभी अंग अपने आप में पूर्ण है। तब कुछ लोग कह सकते हैं तो हम लोग केवल कथा सुनेंगे तो हम भी परीक्षित की तरह भगवान के धाम में चले जाएं, हमें भगवान का नाम लेने की क्या जरूरत है? तो कुछ लोग कहेंगे हम लोग कथा नहीं सुनेंगे, केवल भगवान का नाम लेंगे, भगवान के धाम में चले जाएंगे। तो कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं, ये क्यों कम हो गया, क्या कर रहे हैं? कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग मात्र प्रणाम करेंगे और कुछ नहीं करेंगे तो क्या भगवान के पास चले जाएंगे? यद्यपि ये प्रत्येक साधन अपने आप में पूर्ण है, परंतु हम लोग इस साधन को पूर्ण रूप से कभी नहीं कर सकते। जैसे महाराज परीक्षित ने 7 दिन 7 रात तक भागवत कथा सुना, हम लोग सोचते हैं हम भी 7 दिन में कथा सुनेंगे, भगवान के धाम में चले, लेकिन परीक्षित की तरह हम लोग कथा नहीं सुन सकते हैं। परीक्षित महाराज 7 दिन 7 रात तक एक स्थान पर बैठे हुए, या तो 1 घंटा हुआ लोग ऐसे किसी को भूख लगी है, किसी को प्यास लगी है, वो राजा थे, हम तो एक खोली के भी राजा नहीं है, वो पूरी दुनिया के चक्रवर्ती सम्राट थे, भोग भोगने के अभ्यस्त थे, परंतु फिर भी कहते नहीं सात दुई सा सुनमाम त्यक्तोदम अपि न बाधते पिवंतम त्वाम मुखाम भुजम च्यूतम हरि कथा मृतम। 7 दिन तक महाराज परीक्षित 1 मिनट के लिए सोए नहीं, भोजन नहीं किए और 1 बूंद पानी भी नहीं पिए। क्या हम लोग ऐसा श्रवण कर सकते हैं? तो हम लोग ये जो श्रवण है पूर्ण रूप से कभी नहीं कर सकते, एक दो घंटे में तो थक जाएंगे। कुछ लोग सोचते भी होंगे ये प्रभु जी कब बंद होंगे, ये प्रभु जी का सब कुछ ठीक है लेकिन एक आदत बहुत खराब है, टाइम से बंद नहीं करते। तो श्रवण अपने आप में पूर्ण है लेकिन हम वह साधन पूर्ण रूप से नहीं कर सकते। जैसे कीर्तन, सुखदेव गोस्वामी नित्य निरंतर कीर्तन करते थे लेकिन हम लोग एक घंटा दो घंटा थक जाएंगे। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी जो है बहुत बड़े संत आचार्य, उन्होंने बहुत सुंदर हम सबको एक रास्ता दिया। बोले हम लोग परिचित की तरह श्रवण नहीं कर सकते, हम लोग सुखदेव गोस्वामी की तरह गा नहीं सकते, लेकिन ये नौ साधन थोड़ा थोड़ा तो कर सकते हैं। थोड़ा सुन लिया, थोड़ा नाम जप लिया, थोड़ा प्रणाम कर लिया, तो ये सब कुछ थोड़ा थोड़ा करने से भी भगवान मिल जाएंगे, कोई बात नहीं। केवल एक घंटा कथा सुनो, दो घंटा माला जपो, नियम होगा, थोड़ा बहुत पालन कर लो, मिल जाएंगे। प्रभुपाद जी का ये कहना है और यहां तक कह दिया कि यदि आप 16 माला जप करोगे, 4 नियम का पालन करोगे, आपको लेने के लिए मैं आऊंगा। बैठे हैं ऊपर प्रभुपाद जी, ऊपर बैठे हैं हम सबको लेने के लिए। जो लोग इस संस्था में आ गए, जैसे होता है ना, यहां पर आपको आमंत्रित किया गया तब कहा गया कि आप लोग पास लेकर आना, विदाउट पास नो एंट्री। तो मान लो कुछ लोग होते हैं ना, यार पास में भूल गया, तो यहां जो पहचान वाले होते हैं ना, तू पहुंच जाना, मैं तुझे एंट्री करा दूंगा। तो ऐसे प्रभुपाद जी ने कह के रखा है, इस्कॉन में जो आ गए, 4 नियम का पालन, 16 माला जब एंट्री मैं करा दूंगा। बस केवल प्रभुपाद जी की इस कृपा के अंतर्गत हमको आ जाना है। तो इस प्रकार इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ में 9 कार्य, आपने देखा ना, 7 दिन में सब कुछ, प्रणाम भी हुआ, कीर्तन भी हुआ, कथा भी हुआ, दान भी हुआ, आत्मनिवेदन, वंदन, स्मरण, सब कुछ हुआ। प्रभुपाद जी ने ऐसी भक्ति सिखाई, हम ऐसी भक्ति में है जिसमें सब कुछ होता है, सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके भगवान के पास, और इसमें आनंद भी है क्योंकि जीव का स्वभाव है विविधता। आप स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, तो एक दिन में 7 सब्जेक्ट होते हैं, ऐसा क्यों? सोमवार को मैथ्स, मंगलवार को हिस्ट्री, बुधवार को ज्योमेट्री, ऐसे रखा होता तो इतने सारे पुस्तक उठाकर ले जाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन एक दिन में 7 पीरियड होते हैं आधे पौने घंटे के, क्यों? क्योंकि हमारा स्वभाव है कि एक ही चीज बारंबार करने से हम थक जाते हैं। ऐसे प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर हमको उपाय दिया कि ये 9 भक्ति है ना, तो एक दिन के 9 पीरियड बना दो, सभी भक्ति आधा आधा घंटा करो, आप पार लग जाओगे। तो इस प्रकार मई भक्तिया, मेरी भक्ति के द्वारा, इस 10वें श्लोक में भगवान ऋषभदेव कहते हैं मेरी भक्ति के द्वारा आप मेरे धाम में प्राप्त आ सकते हो। तीसरा कार्य बताते हैं अनुवृत्तिया। अनुवृत्तिया भक्ति में जो अनुकूल कार्य है उसको करने से हम भगवान के धाम में जा सकते हैं, सुखी हो सकते हैं। अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम, ये भक्ति का एक लक्षण है। भगवान को जो अच्छा लगता है वे करना, और भगवान को जो अच्छा नहीं लगता है वे नहीं करना। तो पहले तो हमें यह जानना होगा भगवान को क्या अच्छा लगता है, तो वो कौन बताएगा? हमारे आप जैसे व्यक्ति तो अपने मन की बात बता सकते हैं, शास्त्र में लिखा है भगवान को क्या अच्छा लगता है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 6 अध्याय में भगवान स्वयं एक पूतना नाम की राक्षसी गोकुल में आई थी, और वह राक्षसी अपने स्तन पर कालकूट विष लगाकर आई थी कृष्ण को मारने के लिए, परंतु कृष्ण ने उस पूतना को अपने धाम में भेज दिया। मेरे धाम में यहां क्या कर रहे हो, वैकुंठ में जाओ, वहां रहो, और वहां मेरी मां बनकर रहना, मैं आऊंगा माता जी, मैं आऊंगा। अब वहां पर बहुत बड़ा प्रश्न उठा कि ये पूतना राक्षसी थी, कृष्ण को मारने के लिए आई थी, अपने स्तन पर कालकूट विष लगाकर आई थी, तो लेभे गतिम धात्री उचितम ततोव्यम, तो उस पूतना को भगवान ने अपनी मां बनाकर अपने धाम में क्यों भेज दिया? ऐसा तो पुतना ने क्या किया था, न तो पुतना का कोई भाव अच्छा था, न कार्य अच्छा था, न इरादा अच्छा था, फिर भी भगवान ने पुतना को अपने धाम में क्यों भेज दिया? तो वहां पर उत्तर देते हैं, पुतना जैसी भी थी, चाहे राक्षसी थी, कृष्ण को मारने के लिए आई थी, लेकिन जब पुतना गोकुल में आई ना, तब कंठी और तिलक करके आई थी और भगवान इससे प्रसन्न हो गए और भेज दिया। वाह, भगवान प्रसन्न होते हैं जब कोई तुलसी धारण करता है, क्योंकि भगवान तुलसी से बहुत प्रेम करते हैं। भगवान ने तुलसी को वादा दिया है, इस संसार में तुम जिसके साथ रहोगी मैं उसका उद्धार करूंगा, और बिना तुलसी के भगवान किसी को ग्रहण नहीं करते हैं। भगवान को यदि भोग भी लगाना हो ना, तो उसमें तुलसी पत्र डालना होगा, बिना तुलसी पत्र के भगवान भोजन भी नहीं करते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि आप तुलसी की कंठी क्यों पहनते हो, बिना तुलसी के भगवान हमको भी ग्रहण नहीं करेंगे, इसलिए हमको भी तुलसी पहनकर रखनी चाहिए। तब कहते हैं इसको इतनी टाइट क्यों पहनते हो, फिर से आया ना ये बात, भाई पहनो कोई बात नहीं, लेकिन इतनी टाइट, फांसी का फंदा। टाइट पहनने के दो कारण, तुलसी टाइट इसलिए, पहला कारण तो ये है, अपनी भाषा में तुलसी को टाइट पहनने से लोगों को दिखता है, जैसे पालतू कुत्ता होता है ना, वो गली का कुत्ता है, उसके गले में पट्टा नहीं होता है, बेल्ट नहीं होता है, लेकिन पालतू कुत्ते के गले में बेल्ट होता है और वो भी टाइट होता है। क्यों? क्योंकि म्युनिसिपैलिटी वाले की डॉग वैन जब आए तो पता चले ना ये पालतू है या ये गली का है, है? तो वैसे यमराज के दूत आएंगे तो दिखना चाहिए, भाई ये तुलसी वाला है, इसको छोड़ो, है? ये पहला कारण। और दूसरा शास्त्रीय कारण क्या है, कुछ लोग कहते हैं इतनी टाइट कंठी क्यों पहनते हो, तो हम तो इतना ही कहते हैं, कंठी का अर्थ क्या होता है? कंठी का अर्थ ये होता है जिसको कंठ में धारण करे वो है कंठी। कंठ कहाँ है? यहां के यहां, कंठ यहां है, तो कंठी को कंठ में धारण करनी चाहिए। इसे क्या होता है? इसे ये होता है कि हमारे कंठ से जो भी बाहर निकलता है वे तुलसी को स्पर्श होकर निकलता है, इसलिए जिसके गले में, जिसके कंठ में तुलसी है ना, उसकी वाणी में कुछ ओजस होता है, कुछ प्रभाव होता है। और दूसरा, इस गले से जो इनपुट होता है अंदर जाता है, वह भी तुलसी के को स्पर्श होकर जाता है, वह पवित्र बनकर जाता है। इसलिए तुलसी को कंठ में धारण करना चाहिए, भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। भगवान ऋषभदेव कह रहे हैं अनुवृत्तिया, और इसी के साथ साथ तिलक करना चाहिए। और तिलक माने सिंबल नहीं, आज कुछ लोग अपनी अपनी कंपनी का लोगो बनाए हैं, तो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ में जो तिलक है, ऐसा नहीं कि इसको उनका लोगो है, इसको उनका लोगो तो कोई और है, लोटस है। ये तिलक जो है शास्त्र में वर्णन है, ऊर्ध्व पुंड्र नाम का तिलक सबको करना चाहिए। ये एक साइंस है, विज्ञान है। ये जो तिलक आप देख रहे हैं ना, उसकी एक बाजू की जो तार है ये शिव जी के चरण है, ये दूसरी बाजू जो है ब्रह्मा जी के, और बीच में भगवान विष्णु के चरण है, और भगवान विष्णु के चरण के नीचे तुलसी जी हैं। और ये जो तिलक हम करते हैं, ये तिलक गोपी चंदन से बना है, चंदन है, शास्त्र में लिखा है गोपी चंदन के द्वारा ऊर्ध्व पुंड्र तिलक होना चाहिए। और शास्त्र में जो भी लिखा है ये भावुकता नहीं, एक विज्ञान है। ये तिलक करने से आध्यात्मिक लाभ तो होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं, इसके साथ साथ भौतिक लाभ भी होते हैं। कि आप देखते हैं संसार में सब लोग टेंशन में होते हैं, चिंतित होते हैं, और साइंस यह कहता है कि हमारे शरीर में बहुत सारी नसें हैं, नस, और हमारे शरीर में छोटी छोटी इतनी नसें हैं, यदि उसको जोड़ा जाए, लंबा किया जाए, तो पूरी पृथ्वी का परिघ हो जाएगा, इतनी सारी नसें हैं हमारे शरीर। और ये सभी नस का जंक्शन कहां है? यहां पर, बिल्कुल बीच में। इसलिए आप देखोगे जब आपने टेंशन लिया होगा, बहुत सोचा होगा, तो दर्द कहां होता है? सिर पर, क्योंकि जो भी ट्रैफिक कंट्रोल और जो भी ट्रैफिक है जंक्शन में हो जाती है यहां पर। तब ये जो गोपी चंदन है इसको आप यहां पर लगाओगे तो वो जितनी भी नसें हैं वो सब शांत हो जाती हैं, शरीर में एक शांति मिलती है जिसके द्वारा आप भगवान का स्मरण कर सके। तो इस प्रकार ये तिलक और कंठी के द्वारा, वैसे तिलक और कंठी की बहुत महिमा है, बहुत। पद्म पुराण में एक कथा आती है, एक बार क्योंकि यमराज जी ने भागवत के छठे स्कंद में अपने दूतों को कह दिया, जीवहान वक्ति भगवत गुणनाम देयम चेतस्य न स्मरति तत् चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यत शिर एकदापि तान आनय, तान आनय उनको लेकर आओ जो कृष्ण का नाम नहीं लेते हैं, कृष्ण को प्रणाम नहीं करते हैं, जो तिलक नहीं करते हैं, जो कंठी नहीं पहनते हैं। तो एक बार संसार में बहुत पापी व्यक्ति था, बहुत पाप किया और रास्ते में जा रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो गया। तो यमराज के तीन दूत उसे लेने के लिए आए क्योंकि पापी था, पद्म पुराण में लिखा है। लेकिन उसी समय एक कौवा सौभाग्य से उस मरे हुए व्यक्ति के ऊपर से पसार होकर गया। अब कौवे का स्वभाव तो आप जानते हो, कितना भी अच्छा स्टेच्यू रास्ते में लगाया हो फिर वो देखता नहीं है कि ये कौन है, हमारे नेता है या अभिनेता है। तो कौवा ने तुरंत अपना स्वभाव के अनुसार मल त्यागा और उस व्यक्ति के बिल्कुल यहां पर गिरा। यमराज जी के दूत आए और दूर से देखे, ए, ये तो इस्कॉन वाला है, भागो भागो यहां से, चले गए। क्योंकि तो यमराज जी ने कह के रखा है तिलक वाले को कभी लाना नहीं है, तिलक की महिमा, इसलिए सबको तिलक धारण करना चाहिए। और तिलक एक नहीं 12 होते हैं, हमारे शरीर में 12 तिलक होते हैं, ये तिलक भगवान के अवतार है। तो 12 तिलक करना और कंठी धारण करना, और इसी के साथ साथ चौथा कार्य करते हैं वितृष्णा। धीरे धीरे, आप जल्दी तो ये नहीं कर सकते, परंतु धीरे धीरे संसार के जो भोग ऐश्वर्य है उसको छोड़ना, त्याग करना, ये भावना मन में रखना। तत्पश्चात कहते हैं पांचवा कार्य द्वंद्व तितिक्षया। हमको क्या करना है, सुख दुख को सहन करना है। सुख और दुख आएंगे जीवन में क्योंकि ये जीवन ही कुछ ऐसा है, इसमें कभी सुख कभी दुख, परंतु एक भक्त होता है वे सुख और दुख दोनों को सहता है, सहन करता है, सुख दुख को सहना। छठा कार्य है सर्वत्र जंतो व्यसन अवगत्या। भगवान की प्राप्ति करने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, छठा कार्य कहते हैं कि हम सबको यह सोचना चाहिए कि संसार में सब जगह पर दुख है, सर्वत्र सभी जगह पर जंतु जीवों को व्यसन दुख है। इस संसार में भारत में रहने वाला सोचता है अमेरिका जाएंगे सुखी हो जाएंगे, बेल्जियम जाएंगे सुखी हो जाएंगे, हमारे अमित प्रभु गए थे अभी अभी आए हैं 2 दिन पहले, पूछ लीजिए वहां जाकर आए आप सुखी होकर आए हैं। हमारा ऐसा मानना है कि हम यहां चले जाएंगे सुखी हो जाएंगे, हम अमेरिका वाला सोचेगा यूरोप जाएंगे वहां जाएंगे ब्राजील जाएंगे सुखी हो जाएंगे, परंतु एक भक्त होता है वो सोचता है कि ये पूरा संसार दुखालय है, सर्वत्र जंतो व्यसनम सभी जगह पर दुख है ये हम सबको। और जब तक ये नहीं सोचेंगे ना तब तक हम भगवान के चरणों में नहीं जा सकते। इस संसार में वही व्यक्ति भगवान के शरणों में जाता है जो दुख का अनुभव करता है। इसलिए इस संसार की एक नारी ने, देवी कुंती ने भगवान से मांगा तो क्या मांगा, दुख दीजिए। कृष्ण सामने खड़े थे, उसको जो चाहिए था वो मिल सकता था। कृष्ण ने कहा बुआ जी आपको क्या चाहिए, तब देवी कुंती ने कहा कृष्ण मुझे दुख दो, मुझे दुख चाहिए। आज का कोई व्यक्ति ऐसा मांगे, कोई नहीं। देवी कुंती बुद्धिमान थी, कहा आप दुख क्यों मांग रही हो, तब देवी कुंती ने कहा कृष्ण हम लोग जब दुखी होते हैं तब भी तुम्हारी याद आती है, सुख में तो आप याद ही नहीं आते हो, दुख दो। तो जब दुख आए तो भगवान का स्मरण कर लेना चाहिए, और सुख आए तो यह सोचकर कि यह भगवान की कृपा है, भगवान का स्मरण होना चाहिए, सुख दुख में सम रहना। आगे कहते हैं जिज्ञासया, जिज्ञासा करनी चाहिए। सातवीं बात, सबके मन में जिज्ञासा होनी चाहिए। किसके विषय में? आत्मा के विषय में और परमात्मा के विषय में। जिज्ञासा का अर्थ यहां पर एक ये है कि हर बार मेगा पार्टी हॉल में कथा नहीं होगी, हर रोज हमारे घर पर ये भक्त नहीं आएंगे, हमें भी चलकर कब कहीं जाना होगा। मानो ऐसा सत्संग, ऐसी कथा कहीं थोड़ी दूर हो तो हृदय में जिज्ञासा लेकर कष्ट उठा के भी हमें यह सुनना होगा, जाना होगा। इसे कहते हैं जिज्ञासा, आत्म परमात्म तत्व के विषय में जिज्ञासा। और फिर आठवीं बात बताते हैं तपसा। तपस्या करने से भगवान मिलते हैं, लेकिन कौन सी? दिव्य। भगवान ऋषभदेव कहते हैं कौन सी तपस्या? कहते हैं तपसा एकादशी कार्तिक आदि व्रत लक्षण है ना। हमारे लिए तपस्या क्या है? कहते हैं एकादशी व्रत का पालन करना। वैसे तो बहुत सारे व्रत हैं, परंतु सभी व्रतों का राजा है एकादशी। यदि आप एकादशी व्रत रहते हो तो अन्य कोई व्रत रहने की आवश्यकता नहीं है। एकादशी व्रत रहिए जिससे भगवान डायरेक्ट प्रसन्न होते हैं। तो कहते हैं एकादशी व्रत का पालन करने से भगवान की प्राप्ति होती है। अब एक एक, मान लो ये एकादशी है तो उनके ऊपर एक पूरा प्रवचन हो सकता है, लेकिन समय तो अब जा रहा है इसलिए केवल मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, एक इन्फॉर्मेशन। एकादशी की महिमा शास्त्र में, एकादशी के विषय में प्रमाण, ये सब कुछ है। लेकिन हम लोग भी समय में और गर्मी में बंधे हैं, मैं जानता हूं। आप सोचते होंगे आप तो दो दो पंखे लेकर बैठे हैं और हमें तो मैं जानता हूं आज बहुत गर्मी हो रही है, थोड़ी ही समय, लेकिन आप कथा में ध्यान दोगे गर्मी नहीं लगेगी, एकदम कथा में मग्न हो जाइए। जैसे हमारे प्रभु जी कहते ना, आप लोग डूबिए, हर्षित माधव प्रभु मैं गा रहा हूं आप डूबिए, तो वैसे आप लोग डूबेंगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी। तो तपसा, तपस्या होनी चाहिए। तत्पश्चात इहा निवृत्तिया, सकाम कर्मों को त्याग देना है। सकाम कर्म अर्थात अन्य विलासिता सुनिम ज्ञान कर्म गिनावृतम। कभी कभी कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो भक्ति में बाधा हो जाते हैं। जैसे महाराज नृग रोज 100,000 गाय का दान करते थे। एक बार क्या हुआ, एक ब्राह्मण को 100,000 गाय दान में दे दी, और वह गाय को अभ्यास था महाराज नृग के घर पर रहने का, तो उस ब्राह्मण के घर से राजा के घर पर आ गई। राजा ने दूसरे दिन 100,000 गाय का दान किया तो वो जो गाय वापस आई थी वो दूसरे ब्राह्मण के वहां चली गई। वो ब्राह्मण ढूंढ रहा था एक गाय कहां गई, तो दूसरे ब्राह्मण के घर पर मिली। एक ब्राह्मण ने दूसरे ब्राह्मण को कहा कि ये मेरी गाय है। वो ब्राह्मण ने कहा मेरी गाय, ये राजा ने मुझे दिया। वो कहता है मेरी गाय। दोनों ब्राह्मण के बीच में झगड़ा हुआ, और इस ब्राह्मण के झगड़े के कारण, वैसे तो राजा ने दोनों ब्राह्मणों को कहा कि आप एक काम कीजिए, मैं आपको 1 गाय के बदले 100 गाय दे देता हूं। तो ब्राह्मण कहने लगा 1 के बदले 1 करोड़ दोगे फिर भी नहीं लूंगा, मुझे वही गाय चाहिए। दोनों ब्राह्मण के बीच में झगड़ा, और उस ब्राह्मण के झगड़े के कारण रोज 100,000 गाय का दान करने वाले महाराज नृग कुएं में गिरगिट बने। इतना दान करने वाला, रोज 100,000 गाय दान करने वाला व्यक्ति भी मरने के बाद एक गिरगिट की योनि में चला गया। कभी कभी ऐसा होता है, ऐसे सकाम कार्य भी बाधा बन जाते हैं। तो एक व्यक्ति को बुद्धिमानी से कार्य करना चाहिए। तत्पश्चात द दसवां कार्य कह रहे हैं मत कर्म भी, मेरे लिए कार्य करना। हम जो भी कार्य करते हैं यह सोचकर कि भगवान का है, भगवान के लिए कर रहे हैं। गीता में भगवान कहते हैं मई एव मन आदस्व, आप मेरे लिए मन में सोचो, मई बुद्धि निवेश है, मेरे बारे में सोचो। तो भगवान के लिए सोचना, भगवान के लिए कार्य करना। हम गाते भी है ना, महाराष्ट्र में तो गणेश भक्त की संख्या बहुत है। गणेश जी की जब आरती करते हैं जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति, तो अंत में क्या गाते हैं पता है? काये न वाचा मनसेन्द्रियेर्वा बुद्ध्यात्मनावानुश्रुत स्वभावा करोति यत् यत् सकलं परस्मे नारायणे ते समर्पये तत्। कितने लोग जानते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। वाह, वास्तव में महाराष्ट्र में है। हम लोग बहुत गाते हैं गणेश उत्सव में, लेकिन केवल गाते हैं, कभी इनका अर्थ जाना? इसका अर्थ क्या होता है? कायेन वाचा मनसे, वास्तव में ये जो श्लोक है सनातन धर्म को निरूपण करता है। सनातन धर्म किसे कहते हैं? इसका उत्तर है ये श्लोक। गणेश भक्त रोज गाते हैं, लेकिन इस श्लोक का अर्थ क्या है? कायेन वाचा मनसेन्द्रियेर्वा, काया का अर्थ होता है शरीर, वाचा का अर्थ होता है वाणी, मन का अर्थ तो जानते हैं, इंद्रिय का अर्थ जानते हैं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेर्वा, वा का अर्थ होता है अथवा, बुद्ध्यात्मनावानुश्रुत स्वभावा, अथवा बुद्धि से श्रुति से स्वभाव से ये सब से, करोति यत् यत् सकलम परस्मे, तुम जो भी, सकलम माने सब कुछ, जो भी करते हो करोति, नारायणेति समर्पयेतत, भगवान नारायण को समर्पण कर देना, यही है सनातन धर्म, यही है शुद्ध भक्त। बताइए इसमें क्या गलत है? करोति यत् यत् सकलम परस्मे, जो भी करते हो सकलम, किसको? गणेश जी के सामने खड़े खड़े हम प्रतिज्ञा करते हैं नारायणेति समर्पयेतत, नारायण को, क्योंकि नारायण जो है भगवान कृष्ण है, वह पूर्ण पुरुषोत्तम सुप्रीम पर्सनैलिटी, सबके स्रोत है, इसलिए भगवान को अर्पण करना सब कुछ भगवान के लिए। तत्पश्चात ग्यारहवां कार्य कह रहे हैं मत कथया, मेरी कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने से, आगे एक बार कह चुके, ये दूसरी बार कह रहे हैं मत कथया श्रद्धा से, ये दूसरी बार कह रहे हैं श्रद्धा से मेरी कथा सुननी चाहिए। देखिए कथा सुनते हैं, लेकिन साथ ही साथ भगवान में श्रद्धा भी होनी चाहिए। कुछ लोग सुनते हैं परंतु श्रद्धा से नहीं सुनते हैं। यश श्रद्धदानम रसज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे, श्रद्धा के द्वारा यदि सुनोगे तब ही वह कथा का फायदा होगा। एक बार एक ब्राह्मण को पैसे की आवश्यकता थी, सोचा कृष्ण जो है सबसे धनी है, उसके पास तो बहुत पैसे हैं, उसकी पूजा करूंगा तो बहुत पैसे मिलेंगे। तो वो ब्राह्मण कृष्ण की मूर्ति को अपने घर पर लाए और रोज उनकी आरती पूजा सब कुछ कर रहे थे, पैसे मिलेंगे पैसे मिलेंगे, जय जगदीश, अरे भक्तोजनों के संकट क्षण में दूर कर दे इमीडिएट, और जल्दी से जल्दी संपत्ति घर पर आए, विपत्ति बाजू वाले के घर पर जाए। ब्राह्मण ने बहुत प्रार्थना की भगवान को, लेकिन कृष्ण ने कुछ नहीं किया। तब किसी ने कहा देखो पैसा चाहिए ना, कृष्ण की पूजा मत करो, किसी देवी की पूजा करो। बोले अच्छा, देवी की पूजा करने से पैसा मिले? बोले हाँ। तो कृष्ण को मंदिर से निकालकर शोकेश में रख दिया और फिर मंदिर में देवी माँ को रखा, और फिर देवी माँ को रोज अगरबत्ती करता था, लेकिन खिड़की से हवा आती थी तो अगरबत्ती का धुआं कृष्ण की ओर जाता था, वहां अलमारी में है, शोकेश में। लेकिन ये ब्राह्मण क्रोधित हो गया कि ये कृष्ण कुछ देते नहीं है और अगरबत्ती की सुगंध ये खा रहे हैं। तुरंत ब्राह्मण ने रुई निकाला और अलमारी खोलकर कृष्ण के नाक में रुई रख दिया। बोले इसको मैं क्यों धुआं दूं, अगरबत्ती का धुआं इसको नहीं जाना चाहिए। और उसी समय तुरंत भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। बोले ब्राह्मण देवता मैं तुमसे प्रसन्न हूं, बोले ऐसा कैसे, जब आपकी मंदिर में आपको मंदिर में बिठाकर पूजा कर रहा था तो आप कभी प्रसन्न नहीं हुए, और जब अलमारी में रख दिया, कापूस चढ़ाया नाक में, तब आप प्रसन्न हुए। बोले देखो, जब आप मुझको मंदिर में रखे थे तब आपको मुझ पर श्रद्धा नहीं थी, लेकिन जब धुआं आया तो आपको इतनी श्रद्धा आ गई कि मैं सुगंध सांस भी लेता हूं। श्रद्धा के कारण मैं प्रकट हुआ। भगवान श्रद्धा से प्रकट होते हैं, श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा यदि हो तो भगवान कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। देवताओं के समाज में एक बार प्रश्न उठा कि हरि को कहां ढूंढेंगे, भगवान कहां मिलेंगे, कहां मिलेंगे। कुछ लोगों ने कहा वैकुंठ जाना होगा, कुछ ने कहा मंदिर में जाना होगा, कुछ ने कहा यहां जाना होगा। शिवजी ने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं है। शिवजी ने उस समय ही पार्वती को कहते हैं कि मैं बैठा था उस समाज में और मैंने बताया हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि जो है, भगवान जो है, व्यापक है, सभी जगह पर है। प्रेम ते प्रकट होई में जाना, यदि श्रद्धा हो तो भगवान को कहीं भी प्रकट किया जा सकता है। भगवान को ढूंढने का प्रयास मत करो, हृदय में ऐसी श्रद्धा प्रकट करो ताकि भगवान ढूंढते ढूंढते आपके पास आ जाए। श्री प्रभुपाद जी अक्सर कहते थे ढूंढने का, ये कभी कहीं मिलेंगे नहीं, कृष्ण इतने चंचल है कहां ढूंढोगे, लेकिन ऐसा कार्य करो कि ढूंढते ढूंढते आपके पास आ जाए, भगवान आएंगे। लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए। तो कहते हैं मत कथया, श्रद्धा के साथ मेरी कथा सुनो। श्रद्धा के साथ अब सुना ही देता हूं। श्रद्धा, कथा सुनते समय श्रद्धा होनी चाहिए। कभी कभी होता है सुनने वालों में श्रद्धा नहीं होती है। एक बार एक पंडित जी भागवत कथा सुना रहे थे किसी के घर पर, और वो जो घर था वो बहुत बड़े धनी थे। घर के सब लोग भागवत कथा में बैठे थे और उसी समय उसी घर पर एक चोर आया, और चोर ने देखा कि सब लोग कथा सुन रहे हैं, और चोर ने तिजोरी खोली लेकिन वहां से कुछ नहीं मिला। और उस समय पंडित जी भागवत का दशम स्कंद कृष्ण लीला सुना रहे थे, और चोर थोड़ा बहुत सुनते जा रहा था और तिजोरी खोलते जा रहा था, और कथा क्या चल रही थी, कृष्ण और बलदेव जी ब्रह्म मुहूर्त में गैया चराने के लिए घर से निकल रहे हैं। यशोदा मैया ने बहुत सुंदर गले में सोने का हार पहनाया है। यशोदा मैया ने कृष्ण के हाथ में, बलदेव जी के हाथ में बहुत सुंदर कंगन पहनाए हैं। कृष्ण और बलदेव जी के पांव में बहुत सुंदर सोने के घुंघरू पहनाए हैं। कमर पर बहुत सुंदर करधनी सोने की पहनाई है, सोना सोना। चोर तो तिजोरी छोड़ दिया, और पंडित जी जब कथा करके घर पर जा रहे थे उसका पीछा किया। पंडित जी के घर पर चक्कू दिखा कर कहा, साले दिखा, वो तो जो दो लड़के की बात कर रहा था वो कहां मिलेंगे मुझे, हैं? क्योंकि पंडित जी ने सुनाया था कि वो कृष्ण और बलराम दोनों लड़के हैं, और ये दोनों लड़के सुबह सुबह घर से अकेले जाते हैं, उनके साथ बड़ा कोई नहीं होता है। तो चोर सोच लिया कि अब तो ये लड़कों को तो मैं लूट लूंगा। तो पंडित जी को, तो पंडित जी सोचे वो कृष्ण बलराम तो 5000 वर्ष पहले बीत गए वो तो। तो चोर अब चक्कू दिखा कर कह रहे बता कहां, एड्रेस बता, कहां वो जाते हैं, कहां मिलेंगे। पंडित जी ने भागवत खोला और कहा कि देखो आप मथुरा स्टेशन पे उतर जाना, मथुरा के बाजू में वृंदावन है, और वृंदावन में गोकुल से, बोले कितने टाइम से, कितने टाइम पर घर से निकलते हैं, बोले 4:30 बजे निकलते हैं, 5 बजे ये स्पॉट पर पहुंचते हैं, और लगभग उस वन में सुबह सुबह 6 बजे तक वे पहुंच जाते हैं। सारा एड्रेस पता टाइमिंग सब कुछ चोर ने ले लिया, और चक्कू दिखा कर कहा देखो यदि गलत निकला ना तो फिर से आऊंगा। अब पंडित जी तो टेंशन में, क्योंकि ये जाएगा तो खाली हाथ ही आएगा। पंडित जी तो अपनी सारी सिक्योरिटी तैयार करने लगे, और ये चोर गया, लेकिन चोर को पूर्ण श्रद्धा थी कि ये दोनों लड़के आएंगे मिलेंगे। चोर गया और पंडित जी ने जो भी प्लान बताया था वहां पर एक वृक्ष के ऊपर जाकर बैठ गया। अभी आएंगे, अभी आएंगे, 5 बजा, 5:30 बजा, 6 बजे, तब तक तो दूर से बहुत सारे बछड़े, बहुत सारी गैया,
बहुत सारे ग्वाल बाल चोर को दिखाई दिए, बोले पंडित जी है तो सही। और सब लोग धीरे धीरे करीब आने लगे, और कृष्ण जो है गोपाल है, गाय का पालन करने वाले, इसलिए जो गोपाल होता है ना वो पीछे चलता है, आगे नहीं चलता है। आपने कभी देखा होगा गाय को चराने वाले पीछे चलते हैं। तो ये सब लोग गोप ग्वाल सखा गाय बछड़े सब आगे था, और कृष्ण और बलराम पीछे थे। तो सब लोग आए, उसने देखा सब लोग जब आगे निकल गए, कृष्ण बलराम पीछे दौड़ रहे थे, वह चोर पेड़ से कूदा नीचे और रामपुरी निकाला है, चक्कू निकाला, और कृष्ण बलराम दोनों को दिखा, ए ये आपने जितना गहना पहना है वो जो रुमाल था वो भी फैला दिया, सारे गहने इसमें डालो। तो पहले कृष्ण बोले, नहीं डालेंगे, क्या कर लोगे तुम? बोले ये रामपुरी देख रहे हो ना, ये चक्कू पेट में घुसा दूंगा दोनों के पेट में। बलदेव जी समझदार थे, कृष्ण अब दे दो ना, हमारे पास क्या कमी है, वैसे भी ये भार लग रहे हैं हमको। तो कृष्ण तो बलदेव जी तो सीधा सीधा दे दी, लेकिन कृष्ण ने कहा ये कंगन नहीं दूंगा तो चलेगा? बोले चल निकाल, सब निकाल दिया, कंगन करधनी है। कृष्ण बलराम दोनों ने गहना निकाल दिया, दे दिया, और अब तो हमें छोड़ दो। कृष्ण बलराम दोनों को छोड़ दिया, चले गए, और ये इतना सारा माल हाथ में लगा, चोर को लगा देखो अपना उसूल है, जो हमको चोरी में मदद करता है उनको धन्यवाद तो देना चाहिए कम से कम। चोर ने सोचा उस पंडित जी ने मुझे एड्रेस दिया था, उनके पास जाना है। चोर गया उस पंडित जी के पास, और पंडित जी तो टेंशन में कि लगता है इसको ये मिले नहीं है इसलिए मुझे मारने आया है, क्योंकि धमकी देकर गया था। तो चोर आया पंडित जी के पास, पंडित जी अपना काम हो गया? पंडित जी वाह, आपने मुझे बहुत मदद किया, पूरा जीवन निकल जाए उतना माल हाथ में लगा। पंडित जी ने कहा हो ही नहीं सकता है। बोले हो कैसे नहीं सकता है? तब पंडित जी ने खुलासा किया, ये बात तो 5000 वर्ष पहले की थी। नहीं, चोर ने कहा नहीं, मैं मिलकर आया, आपने जैसा वर्णन किया था, एक गौर था एक श्याम था दोनों बाल। पंडित जी ने कहा हो ही नहीं सकता है। बोले कैसे नहीं हो सकता है, मैं साथ में लेकर आया हूं धन। गहना गहना निकाल कर दिखाया, फिर भी पंडित जी को लगा ये किसी और लड़के को पकड़ा होगा। पंडित जी ने कहा मुझे विश्वास नहीं, मुझे दिखाओ। चोर उनको लेकर गया, उसी वृक्ष के ऊपर पंडित जी को बिठाया, स्वयं बैठे, और चोर ने देखा दूर से कृष्ण बलदेव ये सब लोग आ रहे थे, चले गए। चोर और पंडित जी नीचे उतरे, कृष्ण बलदेव को खड़ा रखा। फिर चोर ने कहा देखो ये है ना कृष्ण और बलदेव, पंडित जी को नहीं दिख रहा था। पंडित जी ने कहा मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। चोर ने कहा अरे ये दोनों खड़े हैं, दोनों मेरे साथ बात कर रहे हैं। पंडित जी को नहीं दिखाई दिया। तब चोर ने कृष्ण और बलदेव को पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे दिखाई दे रहे हो और ये पंडित जी को नहीं दिखाई दे रहे हो? तब भगवान ने कहा देखो आपको मुझ में पूर्ण श्रद्धा है, और ये पंडित जी कथा करते हैं लेकिन श्रद्धा नहीं है, इसलिए उनको नहीं दिखाई दे रहा हूं। अब एक काम करो, आप अपना हाथ, प्रकाश भाई स्वागत, आप एक काम करो कि आप अपना हाथ उस पंडित जी के हाथ से पकड़ लो, आपके प्रभाव से उस पंडित जी के आंख में शक्ति आएगी और मेरा दर्शन होगा। चोर ने उस पंडित जी का हाथ पकड़ा, और फिर पंडित जी उस चोर को देख पाए। कहने का तात्पर्य यह है श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा से हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं, और उसी श्रद्धा के साथ हमें भगवान की कथा सुननी चाहिए।
पूज्य लाल गोविंद दास प्रभु जी, उनके सभी साथीगण जिन्होंने इस सुंदर कार्यक्रम का आयोजन पिछले 7 साल से जो लगातार करते आ रहे, ऐसे प्रकाश भाई सचिंद्र भाई, और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सभी बोरेली के भक्तजन इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित रहते हैं, इसलिए मैं आप सभी को सबसे पहले तो वंदन करता हूं, और आप सभी की ओर से प्रकाश भाई और सचिंद्र भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। प्रकाश भाई मुझे बता रहे थे पहले साल जब ये कथा का प्रारंभ किया, शुभारंभ किया, तब 100 लोग थे और आज 1500 से भी अधिक लोग, जितने लोग अंदर है उससे भी दुगना लोग बाहर बैठकर इस कथा का लाभ ले रहे, ये हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। मैं भगवान के चरणों में प्रार्थना करूंगा कि आप सबके दिलो दिमाग में ये भक्ति भाव आने वाले दिनों में और दुगनी हो, और खास करके जो हमारे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं उनके जीवन में भक्तिमय जीवन जीने का उनको प्रेरणा प्राप्त हो, और इस प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे प्रेरणा प्राप्त होते हैं। हमारे माता पिताओं ने धर्म को टिकाए रखा, उसको हमने आगे बढ़ाई, हमारे आज के जो छोटे बच्चे हैं वो आने वाले दिनों में आगे बढ़ाएंगे। मैं लाल गोविंद दास प्रभु जी की आज्ञा से एक ही बात बताना चाहूँगा, हम सब के लिए कल का दिन बहुत ही बड़ा सौभाग्यपूर्ण दिन रहा है। जो ऐतिहासिक निर्णय कल आया, मुझे लगता है कि हम मरते समय स्वाभिमान से मर पाएंगे, है ना? अरे बोल, नहीं तो कल का जो निर्णय आया उसके विपरीत अगर आता तो हमको जीवन भर मन में कोई ना कोई एक रंज, एक ठेस लेकर आगे बढ़ना पड़ता था, लेकिन हम सबका ये सौभाग्य है। और ये सौभाग्य के पीछे अगर कोई अनेक कारणों में से एक कारण के बारे में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ये कहूँगा कि लाल गोविंद दास प्रभु जी जैसे संतों ने अपने देश के पारंपरिक जो धार्मिक जो विरासत है उसको टिकाए रखा। ऐसे संत पुरुष अगर नहीं होते तो फिर हम भी भक्तिभाव से जुड़ते नहीं थे, और इसलिए इसका बहुत बड़ा योगदान है। मैं चाहूँगा कि आने वाले दिनों में हम सब लोग मिलकर अपनी देश की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको जीवित रखने का काम करेंगे, और ऐसा काम करने का भाग्य हम सब लोगों को मिला, इसलिए हम सभी लोग बहुत ही भाग्यवान है। मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय श्री कृष्ण।
थैंक यू। गोपाल का नाम ही होता है गो का अर्थ होता है इंद्रिया, और पाल का अर्थ होता है पालन करने वाले। वास्तव में गोपाल जी का नाम ही केवल गोपाल नहीं है, उनके कार्य भी हैं। हम तो यहाँ पर मुंबई में अनेक सालों से रहते हैं, हम देखते हैं कि उनकी ऑफिस में कोई भी जाता है तो खाली हाथ वापस नहीं जाता है। और मैंने यह भी सुना है कि वो पहले से जब से इस फील्ड में आए 8 बजे अपने ऑफिस में पहुंच जाते हैं। आज तक, आज भगवान की कृपा से आपके आशीर्वाद ने सफलता के शिखर पर गोपाल जी को पहुंचाया है और पहुंचते रहेंगे, लेकिन कभी भी अपना जो कर्म है ये कभी भूलेंगे नहीं। वे हम सबको उत्साह देते हैं। प्रभु जी ने कहा कि लाल गोविंद दास प्रभु जैसे संतों की कृपा से ये जो निर्णय आया कल राम जन्मभूमि का, अनुकूल निर्णय आया, लेकिन वास्तव में इसके पीछे केवल संतों का हाथ नहीं, इसके पीछे इस देश को चलाने वाले राजा और नेताओं का भी हाथ है। क्योंकि गोपाल जी जैसे नेता और राजा हमारे साथ न हो तो हम भी सुख और शांति से भक्ति नहीं कर सकते हैं। तो हम बहुत धन्यवाद देते हैं गोपाल जी को, और हम आपसे वादा करते हैं कि हम पूरे प्रयास से और मुंबई की और पूरे विश्व के जितने भी यूथ हैं, जवान हैं, सभी लड़कों को लेकर हमारी भारत की संस्कृति को जीवित रखेंगे। राज गोपाल जी से मैं एक ही प्रार्थना करता हूं कि हम चाहते हैं कि यह कार्य हमारी बोरीवली से प्रारंभ हो, और बोरीवली में एक भव्य ऐसा कार्यक्रम हो, उसमें एक ऐसा मंदिर बने, एक ऐसी छत बने जिसमें हजारों यूथ, हजारों युवा, हजारों भक्तों एक छत के नीचे आकर इस भारत की संस्कृति को जीवित रखने का प्रयास करें। कृपया करके हमको सहायता दीजिए, हम सब साथ में रहकर यह सब कार्य करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।
हरे कृष्णा। साथ ही साथ हम नम्र विनंती करते हैं श्रीमान शंकर जी से कि वे कृपया यहाँ मंच पे आए और हिज ग्रेस श्रीमान लाल गोविंद प्रभु जी के हस्तकमलों से भगवान की पुष्पमाला आशीर्वाद स्वरूप स्वीकार करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब हम कथा को पुनः प्रारंभ करेंगे, कथा के इस सत्र को पुनः प्रारंभ करेंगे।
मत कथया, 11वां कार्य हमारे लिए है श्रद्धा से भगवान की कथा सुनना। तत्पश्चात 12वां कार्य कहते हैं मत देव संगात। हमें यदि भक्ति में प्रगति करनी है, भगवान को पाना है, सुखी होना है, तो अच्छे लोगों का संग करना चाहिए, और ऐसे लोगों का संग जो भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं, जो स्वयं शुद्ध है। शुद्ध लोगों के साथ रहोगे तो शुद्ध बनोगे, और अपवित्र लोगों के साथ रहोगे तो अपवित्र हो जाओगे। भक्तों का संग करना, मैं गुण कीर्तनात्, भगवान के गुणों का कीर्तन करना, निर्वैर, किसी से भी शत्रुता न रखना। कभी भी किसी को शत्रु नहीं समझना चाहिए। हम लोग किसी से प्रेम करते हैं, किसी से द्वेष करते हैं, किसी से राग देश द्वेष, इसका कारण है अज्ञान। यदि इतना सा छोटा सा ज्ञान हो जाए कि हम यह आत्मा नहीं, हम परमात्मा, क्षमा कीजिए, हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, और यह आत्मा परमात्मा का अंश है, हम सब के पिता एक हैं, परमात्मा भगवान, और उस एक पिता के ही हम सब पुत्र हैं। जब ऐसा सोचते हैं तब किसी के प्रति द्वेष नहीं रहता है। तत्पश्चात 15वां कार्य है साम्य, समत्व, समभावना रखनी चाहिए सबके प्रति। उपशमेन, जीवन में वैराग्य होना चाहिए, जीवन सरल होना चाहिए। देखिए, एक बार श्री प्रभुपाद जी को पूछा गया, भक्त कैसा होता है? जिनका जीवन सरल हो और जिनके विचार उच्च हो, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, ये है भक्त का स्वभाव। भक्त जो होता है सरल होता है, और विचार उनके ऊंचे होते हैं, बहुत शुद्ध। वैराग्य, जिहासया देह यह आत्मबुद्धे, मैं और मेरा, ये जो भावना है इसको त्याग करना। अध्यात्म योगेन, आध्यात्मिक योग का अर्थ होता है शास्त्र को पढ़ना। शास्त्र को पढ़ने से भगवान मिलते हैं, क्योंकि भगवान जो है शास्त्र में छिपे हैं, शास्त्रों के अर्थ में छिपे हैं। हम जब शास्त्र को पढ़ते हैं, शास्त्र के द्वारा, उनके अर्थ के द्वारा भगवान समझ में आते हैं, और जैसे ही भगवान समझ में आते हैं, भगवान प्रकट होते हैं। शास्त्र को पढ़ना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी सभी सिद्धांतों का सार बताते हुए कहते हैं, बुक्स आर बेसिस, मेरी जो पुस्तकें हैं ये भक्ति में नींव है। तो ये नींव जो है शास्त्र है, उनको पढ़ना। विविक्त सेवया, भक्तों के संग में रहकर सेवा करनी चाहिए। देखिए, कलयुग में अकेले अकेले भक्ति नहीं करनी है। कुछ लोग एकांत में, निर्जन स्थान में चले जाते हैं जहां कोई ना हो। कलयुग में यदि अकेले भक्ति करना चाहोगे तो पतन हो जाएगा। कलयुग में साथ साथ रहकर, सबको साथ में रहकर भगवान का नाम कथा कीर्तन करनी चाहिए। तत्पश्चात प्राणेन्द्रिय आत्म अभिजयेन, अपनी प्राण को और अपने सांस को प्राणायाम करना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, भक्तों को ये सब करने की जरूरत नहीं, भक्त कीर्तन करो, प्राणायाम ऑटोमेटिक हो जाएंगे। क्या होता है अनुलोम विलोम में? क्या होता है? लंबी सांस लेते हैं फिर छोड़ते हैं। कपालभाति में क्या होता है? जोर से सांस छोड़ते हैं। कीर्तन में क्या होता है? आप करके देखिए, नाचिए, अनुलोम विलोम, योग, योगासन, जो भी है सब कुछ हो जाएगा। तो इस प्रकार से भगवान का कीर्तन करना, सत शुद्ध या संतों में श्रद्धा रखना, ब्रह्मचर्येण, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, शश्वत असम प्रमादेन, निरंतर अपने कर्तव्य का पालन करना, अपने जो घर के कर्तव्य है उसका पालन करते हुए भगवान की भक्ति करना, और वाचम अपनी वाणी को भगवान में लगाना। जो भी इस बात कहते हैं, यदि इतना कोई करता है तो मुक्ति को प्राप्त होता है, संसार के दुखों से मुक्त हो जाता है और भगवान के धाम में चला जाता है। आपने ताली तो बजा दी, लेकिन ये 24 कार्य कर पाओगे? कुछ लोगों को तो याद भी नहीं होंगे। इसलिए अंत में कहते हैं कि मानो ये 24 कार्य हमको याद न रहे हो, ये और करना भी मुश्किल हो, कभी कभी कुछ एक सब करना मुश्किल हो जाता है, तो ये सभी कार्यों को भूल जाओ, केवल एक चीज याद रखोगे, ये सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। अच्छा है ना, ये क्या 24 की मगजमारी करना, एक चीज याद लग के चले जाएंगे है? 7 दिन की कथा में और कुछ लेकर जाओ या न जाओ, ये एक वस्तु जो है, यदि ये चीज हमारे जीवन में आ गई तो ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक ढल जाएगा, हो जाएगा। जैसे आपके पास 1,000 रुपये की नोट आ गई तो इसमें 500 की भी है, 50 की भी है, 100 की भी है, 10 की भी है, चिल्लर भी है, सब कुछ है, एक चीज। और वो चीज क्या है? यदि ये कुछ भी याद न रहे, न कर पाओ, कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, केवल भगवान का नाम लो, ये सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक बेनिफिट है। बेनिफिट क्या है? हम लोग कलयुग में हैं और हमको है ना बेनिफिट लेना चाहिए। जो बिजनेसमैन बुद्धिमान होता है ना, वो बेनिफिट ले लेता है। वैसे तो ये कलयुग दोषों का सागर है, कले कले दोषों निधे राजन, ये कलयुग जो है दोषों का सागर है, इसमें पदम पदम यत विपदा, कदम कदम पर पाप हो रहे हैं। लेकिन कलयुग में एक गुण है, अस्ति एको महान गुण, और इसीलिए परीक्षित महाराज ने कलयुग को आने दिया। कलयुग में गुण क्या है? कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। अन्य युगों में सतयुग द्वापर त्रेता में हजारों हजारों वर्षों तक तपस्या दान ध्यान करने के बाद भी जो भगवान नहीं मिलते हैं, कलयुग में मात्र उनका नाम लेने से हमें मिल जाएंगे। बताइए इससे बड़ा बेनिफिट, ये तो बोनस स्टेज मिल गया हमको। कौन कहता है कलयुग में तकलीफ है? थोड़ी बहुत तकलीफ सहन कर लो, लेकिन भगवान की प्राप्ति बिल्कुल आसान, केवल उनका नाम। और सभी शास्त्रों में लिखा है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी उतरो भव पारा। कलयुग मात्र नाम के आधार पर टिका है। कलयुग में भगवान का नाम ले लो, भगवान की प्राप्ति हो गई, मात्र भगवान का नाम। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, हरि का नाम, हरि का नाम और मात्र हरि का नाम ही। कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्य था, ये हरि का, भगवान का नाम ही कलयुग के दोषों से मुक्त करा के भगवान के धाम को प्राप्त करा देता है, हरि का नाम। और बुद्धिमानी से यदि शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि अलग अलग युगों में भगवान की प्राप्ति करने के अलग अलग साधन होते हैं। सतयुग में यदि भगवान को प्राप्त करना हो तो कृते ध्यायतो विष्णु, भगवान का ध्यान करना चाहिए। त्रेतायाम यजतो मखे, त्रेतायुग में भगवान की प्राप्ति करनी है तो यज्ञ करना होगा। त्रेतायुग में ध्यान करोगे तो भगवान नहीं मिलेंगे। सभी युगों के अलग अलग साधन होते हैं। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में अर्च विग्रह की उपासना करके ही भगवान मिल सकते हैं। और कलयुग में क्या करने से भगवान मिलेंगे? तो शास्त्र में लिखा है कलो तद हरि कीर्तनाद, कलयुग में मात्र भगवान का नाम लेने से भगवान मिल जाएंगे। कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, कलयुग में भगवान श्री कृष्ण का अवतार उनके नाम के रूप में हुआ है। इसलिए भगवान ने नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति, अपने नाम में अपनी सारी शक्ति डाल दी है। कलयुग में भगवान का नाम लो, भगवान प्राप्त हो जाएंगे, शुद्ध हो जाओगे। तब एक प्रश्न बनता है हम लोग भगवान का नाम लेंगे, कृष्ण का नाम लेंगे, लेकिन तकलीफ ये है हरि के हजार नाम, कृष्ण के करोड़ नाम, कौन सा नाम लेना है, ये कंफ्यूजन है, कौन सा मंत्र जपना है, क्योंकि हजारों मंत्र है। तब कलयुग का एक विशेष मंत्र है, कलयुग में यदि भगवान की प्राप्ति जल्दी करनी है तो शास्त्र में बताया गया है, पद्म पुराण, ऐसे अनेक पुराणों में, अनेक शास्त्रों में बताया गया है। पद्म पुराण में सीधा सीधा लिखा है, मैं पहले संस्कृत में बताऊंगा क्योंकि सबूत चाहिए ना, आपको विश्वास होना चाहिए, यह हमारे मन बुद्धि की बात नहीं है। पद्म पुराण में सीधा लिखा है, द्वात्रिश अक्षरम मंत्र नाम षोडश कान्वितम प्रजपन वैष्णवो नित्यम राधा कृष्ण स्थलम लभेत। सबको बंपर गया होगा ऊपर से, कोई नहीं समझा, लेकिन आप समझ पाओगे, ध्यान से सुनिए। यह संस्कृत का श्लोक है पद्म पुराण का, क्या श्लोक है, द्वात्रिश अक्षरम मंत्र, धीरे धीरे करके समझते हैं। द्वा का अर्थ होता है दो, त्रिश का अर्थ होता है तीस, तो 30 प्लस 2 कितना होता है 32, 32, द्वातीस का अर्थ होता है 32, द्वातीस अक्षरम मंत्र, ऐसा मंत्र जिसमें 32 अक्षर हो, ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, नाम षोडश कान्वितम, षोडश का अर्थ होता है 16, 16, जिस मंत्र में 16 नाम हो, ऐसा मंत्र जिसमें 32 अक्षर हो और जिसमें 16 नाम हो। अब दूसरी लाइन में श्लोक में, प्रजपन वैष्णवो नित्यम, यदि कोई उसका जाप करता है राधा कृष्ण स्थलम लभेत, राधा और कृष्ण जहां पर रहते हैं उस स्थान को प्राप्त हो सकता है। तो राधा कृष्ण जहां रहते हैं उस भगवान के धाम को प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, ऐसा मंत्र जपना होगा जिसमें 32 अक्षर है और 16 नाम है। अब ये मंत्र कौन सा है आप लोग ही ढूंढ लीजिए। वाह, सब लोग बुद्धिमान है, 7 दिन में सब, मैं खाली फोकड़ियां बोल रहा हूं। तो देखिए, मैं नहीं बोला, आप लोग ही बोले हैं, ये एक ऐसा मंत्र है जिसमें 32 अक्षर और 16 नाम है, कलयुग में भगवान की प्राप्ति करने के लिए, सुखी होने के लिए यही मंत्र है, जिसे महामंत्र कहा जाता है, जो सभी मंत्रों का राजा है, क्योंकि अन्य जितने भी वेदों के हैं सब मंत्र है, और वह मंत्र योग्य आसन, योग्य पात्र, योग्य जगह पर, योग्य स्थान पर लेना चाहिए, नहीं तो वही मंत्र रिएक्शन करता है। परंतु ये महामंत्र, खाईते सुईते जथा तथा नाम लई, देश काल नियम नास्ति सर्व सिद्धि है, ये महामंत्र जो है चलते हुए, खाते हुए, पीते हुए, सोते हुए, बैठते हुए आप इससे जपोगे तो निश्चित आपकी सिद्धि हो जाएगी और बहुत कम समय में सुखी हो जाओगे और भगवान की प्राप्ति मृत्यु के बाद हो जाएगी। और केवल पद्म पुराण में ही नहीं, आप लोग कह सकते हैं एक कहीं से एक श्लोक ढूंढ के लाया है, हमको बता रहा है, सर्व शास्त्र कई, सभी शास्त्र में, पुराणों में भी कहा गया, उपनिषद में भी कहा गया है, कलि संतरण उपनिषद, वहां तो सीधा सीधा कहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम नाम राम हरे हरे, इति षोडश काम नामन कलि कलमश नाशनम नाथ परत रोपाय सर्व वेदेशु दृश्यते, सर्व वेदेशु दृश्यते, सभी वेदों को देखने के बाद एक ही महामंत्र है जिसके द्वारा कलयुग में उद्धार हो सकता है, वो है हरे कृष्णा हरे हरे,
हरे राम 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 हरे,
इसलिए इस महामंत्र को जपना चाहिए। सब लोग बैठे रहिए, एक विशेष चीज मैं आपको कहने वाला हूं, लेकिन ये महामंत्र ही सबका उद्धार करने वाला है, और अंतिम घड़ी आ गई है, इसलिए अंतिम घड़ी में 2 मिनट हम आंख बंद करके हृदय से प्रेम से भगवान को याद करते हुए इस महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे
हरे राम राम हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
तो इस प्रकार भगवान का महामंत्र प्रतिदिन गाइए जपिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। इसी महामंत्र के बल पर आप सुखी होकर भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हो। भक्तों, यहाँ पर कहने के लिए बहुत सारी वस्तुएं हैं, बोलने के लिए बहुत चीज हैं, सुनने के लिए बहुत कथाएं हैं, परंतु हम सब काल की अवधि में बंधे हुए हैं, इसलिए मजबूरन होकर यहाँ पर इस कथा को अंत करना पड़ रहा है। हमें हृदय में कोई सुख नहीं हो रहा है कि हम यहाँ पर बंद करें, क्योंकि आप जैसे पवित्र लोगों का संग, आप जैसे भक्तों का दर्शन और इतनी श्रद्धा से आप सुनने के लिए आते हो। वास्तव में ये 7 दिन कैसे बीत गया, लगता है 7 मिनट बीती हो ऐसा लग रहा है ना? इसी प्रकार हम भगवान की भक्ति में, कथा में, कीर्तन में लगे रहेंगे तो जीवन कैसे सुखमय बीत जाएगा कोई पता नहीं चलेगा। जीवन में दुख है, सभी जगह पर दुख है, लेकिन भगवत कथा इतनी सुखदाई है, दुख का अनुभव ही नहीं होने देती है। आपने देखा, हम ऑफिस में, कहीं घर पर, स्थान पर कितने टेंशन में, दुख में होते हैं, लेकिन जैसे यहां आकर बैठ जाते हैं सारा दुख खत्म हो जाता है। भगवान ने ध्रुव महाराज को कहा, ध्रुव तुमने 6 महीना तपस्या की, तुम्हें जो चाहिए मांग लो। ध्रुव ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहा, कुछ तो मांगो। ध्रुव ने कहा, एक काम करो, मुझे आशीर्वाद दो, मैं निरंतर आपकी कथा सुन सकूं। भगवान ने कहा, ध्रुव तुम जानते नहीं हो संसार में कितना दुख है, कथा सुनकर क्या करोगे। तब ध्रुव महाराज ने बहुत सुंदर बात कही, प्रभु आपकी कथा इतनी मादक है, आपकी कथा जब हम सुनते हैं तो हम मदमस्त हो जाते हैं, मत हो जाते हैं, मतवाले हो जाते हैं। जैसे शराब पीकर व्यक्ति मतवाला हो जाता है ना, आपने देखा होगा, कुछ लोग ने पिया होगा, उसको अनुभव भी होगा। किसी को पूछिए आप शराब क्यों पीते हो, तो कारण यही है। कहते हैं कि जीवन में बहुत टेंशन आता है, दूध का बिल, टेलीफोन का बिल, लाइट का बिल, वसूली वाले का फोन आता है, घर पे पत्नी टेंशन देती हैं, बच्चों का टेंशन, जब चारों ओर से टेंशन आता है तब हम पी लेते हैं, मार लेते हैं थोड़ा। अच्छा, शराब पीकर क्या होता है? शराब पीकर नशा चढ़ता है, और जब नशा चढ़ता है तब संसार का सारा दुख भूल जाते हैं। बात भी सत्य है, जब किसी को नशा चढ़ता है, गटर के बाजू में सोया है लेकिन उसे लगता है कि मैं राजा हूं, भारत का प्राइम मिनिस्टर मैं। नशे में व्यक्ति को बाहरिक दुख का अनुभव नहीं होता है, परंतु कितनी भी महंगी शराब पीजिए उसका नशा 2 घंटा 5 घंटा 10 घंटा रहता है, फिर तो दुख आने वाले हैं। लेकिन भगवान की कथा का नशा जीवन भर तक रहता है यदि कोई जीवन भर यह सुनता रहा। ध्रुव ने कहा, प्रभु जीवन भर आपकी कथा सुनते रहेंगे ये दुख तो हमसे कोसों दूर रहेंगे। भगवान की कथा में सारे दुखों से हम मुक्त हो जाते हैं, भगवान के नाम से परम सुखी हो जाते हैं। इसलिए एक भक्त ने बहुत सुंदर कहा है, वो मोद न मुक्ति के मंदिर में जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है, जो आनंद भगवान के धाम में है वो आनंद मुक्ति के मंदिर में भी नहीं है, और जो सुंदरता कृष्ण में है वो सुंदरता और कहीं नहीं है। एक संत तो बहुत सुंदर कहते हैं, इस संसार में कृष्ण ही सुंदर, बाकी सब छछुंदर है। बहुत सुंदर कृष्ण के जो मित्र है ना, कभी कभी तो कृष्ण को गाली देकर कहते हैं, अरे सारे है? तू लड़का बना है तो इतने लोगों के नाक में दम करके रखा है, है? किसी को ठीक से भोजन करने नहीं देता है, है? गोपिया को ठीक से काम करने नहीं देता है। कृष्ण जब बाहर निकलते सारी गोपिया मदमस्त है। ये गाय और बछड़े जब भोजन करते हैं कृष्ण को देखकर न खा सकते हैं न निकाल सकते हैं, जंगल में पेड़ पौधे वृक्ष को सबको परेशान, कृष्ण के सखा कहते हैं सारे भगवान ने लड़का बनाया तो इतने लोगों के नाक में दम करके रखा है, यदि लड़की बनाया होता तो लाखों लोग गला काट के मर गए होते तुझे प्राप्त, कट जाते गला करोड़न के। अद्भुत सुंदरता, वो मोदन मुक्ति के मंदिर में जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है, न सुमे न सरोज सुधार समय जो ललाम लता अभिराम में है, उतनी छवि राशि अनंत कहां जितना छवि सुंदर श्याम में है, उतना सुख और कहीं भी नहीं जितना सुख कृष्ण के। कृष्ण के नाम में जितना सुख है उतना और कहीं नहीं। कुछ लोग पूछते हैं कितना है, तो कितना है हम कितना बताएंगे, वो तो जब आप लोगे तब पता चलेगा। आप शराब पीने वाले को कहो, शराब पीकर जब नशा चढ़ता है तो कैसा लगता है, तो बेचारा क्या बताएगा, उसके लिए पीना होगा ना। मैं नहीं कहता हूं आप लोग शराब पीजिएगा, लेकिन मैं जस्ट उदाहरण दे रहा हूं कि कृष्ण के नाम में कितना आनंद है, तो जब आप लोगे तब आनंद पता चलेगा। कृष्ण का नाम लीजिए, ये सभी कथाओं का, शास्त्र का, वेदों का सार यही है। श्रीमद् भागवत का अंत करते हुए सुत गोस्वामी कहते हैं कि संसार में नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशन। हम लोग यहां क्यों फंसे हैं? पाप के कारण, कहीं ना कहीं कभी ना कभी छोटा बड़ा हमसे पाप हो गया इसलिए फंसे हैं। परंतु भागवत को बंद करते हुए, भागवत कथा समाप्त करते हुए सुध गोस्वामी नैमिषारण्य में कहते हैं, नाम संकीर्तन यस्य, भगवान श्री कृष्ण का नाम लेने से सर्व पाप प्रणाशनम, सभी पापों का नाश हो जाता है। तो भगवान का नाम लीजिए, अपने सभी पापों को जलकर भस्म कर दीजिए, अपने आप को पवित्र बनाइए और भगवान के धाम को प्राप्त कर लीजिए। वैसे बहुत सारी बातें अधूरी रह गई हैं, कहने के लिए भी बहुत कुछ है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, ऐसे कार्यक्रम हमारे मुंबई में बहुत सारे होते हैं। हमारे मुंबई में एक नहीं, चार चार इस्कॉन के मंदिर हैं, मीरा रोड में, जुहू में, ग्रांट रोड गिरगांव चौपाटी और खार रोड में, और इस इस्कॉन के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम, हमारे द्वारा एक वीक में 8 प्रोग्राम होते हैं, इसी प्रकार की कथा होती है। तो आप सब भक्तों से निवेदन है, और भी आपको डिटेल में यदि कुछ जानना है तो हमारे रेगुलर साप्ताहिक प्रोग्राम में आइए। यहाँ तो केवल आपको ट्रेलर बताया गया है ना, ट्रेलर, फिल्म का जो ट्रेलर होता है वह मिला आपको। यदि वास्तविक शास्त्र को और शुद्ध ज्ञान को गहराई से जानना हो तो प्रति सप्ताह हमारे प्रोग्राम होते हैं, जैसे सोमवार को मलाड में, मंगलवार को यहाँ बोरीवली में, यहाँ 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 से 5 मिनट दूर शीतला शंकर मंदिर है, आप वहाँ पर प्रति मंगलवार को आइए, हम मिलेंगे आपको। वहाँ पर ऐसे ही प्रवचन होगा, कीर्तन होगा, तो ये प्रवचन और कीर्तन का प्रति मंगलवार को लाभ लीजिए। और बुधवार को पारला में होता है, आपको जो दिया गया है इसमें आप पढ़कर आ सकते हैं, और वहाँ पर हम लोग मिलेंगे, इसी ज्ञान को हम आगे बढ़ाएंगे। सभी भक्तों से निवेदन है, ये यहाँ पर कार्य खत्म नहीं होता है, अब तो शुरू होने वाला है, तो आप अपने जीवन को उज्ज्वल कीजिए, शुरू कीजिए। और पिछले 7 दिनों में मेरे द्वारा बहुत कुछ बोला गया, और होता है कि जब बोलते हैं तो जीवा के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है, चमड़े की है ना, कभी स्लिप हो जाती है, तो कभी कभी मेरे द्वारा कुछ कठोर शब्द निकल गए हो, कभी कभी मेरे द्वारा कुछ कठोर शब्द निकल गए हो और आपके हृदय में कुछ दुख लगा हो, ठेस पहुंची हो, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मेरा इरादा किसी के हृदय को ठेस पहुंचाना नहीं था, मेरा एक ही इरादा होता है कि भागवत के श्लोकों को ठीक से आपको समझाऊं, प्रकट करूं, और उसमें कभी किसी को दुख लग गया हो तो मुझे क्षमा कीजिए। आपका पुत्र समझकर, छोटा भाई समझकर, हम आपके दास हैं, सेवक हैं, आपकी सेवा करने का मौका यहाँ पर मिला, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। और इस कथा को सफल बनाने में बहुत लोगों का हाथ है, ये एक व्यक्ति का काम नहीं है, बहुत लोग इसके पीछे हैं, जैसे रामकृष्ण महिला मंडल, ये सभी माताओं ने मिलकर बहुत सुंदर यहाँ पर इस भागवत कथा का आयोजन किया है। मैं बहुत आभारी हूँ रामकृष्ण महिला मंडल के माताजियों का, और मैं आशा करता हूँ कि ये परंपरा प्रति वर्ष में निभाते रहे। और इसी प्रकार इस संसार की सभी माताओं को एक आदर्श स्थापित करें।